मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
हाँ भाई, आयो 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 आयो, अभी तो बनाई थी आपने। अच्छा अच्छा, एक बना लो और ये बना दे वीडियो। अच्छा है, विचार वीडियो में आ जाए ना। चलो हाँ, चलो मिलेंगे मिलेंगे, मैं बताता हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्लि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम क़ाइमून, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून। सूरह मारिज के दूसरे रुकू की ये आयात हैं। अल्लाह ने अहले ईमान की सिफात बयान की बहुत सारी, उनमें एक सिफत वल्लदीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन, ये लोग अपनी अमानतों और मुआहदों की रियायत करते हैं। अल्लाह करे ये आयत हम सब की समझ में आ जाए। अमानत का क्या मतलब है? अमीन कहते हैं काबिले एतमाद, ट्रस्ट, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, आप उसकी तरफ से बेखौफ हो। अमन से निकला है ना, अमन। अमन किसे कहते हैं? सलामती, अमन। जंग के अपोजिट को अमन कहा जाता है। और अमीन, आप उससे बेखौफ हो। आप जिसको अपनी अमानत देते हो उसको भी अमीन कहा जाता है। आप किसी के पास अपनी अमानत रखवाते हो तो जिसके पास आपने अमानत रखवाई है उसे क्या कहा जाता है? अमीन। क्यों अमानत क्यों रखवा रहे हो? आप उससे बेखौफ हो, आपको पता है भाई ये बंदा एक नंबर है, मैं इसके पास कुछ भी रखवाऊंगा तो मुझे ट्रस्ट है, इस पे एतमाद है, ये उसमें डंडी नहीं मारेगा, घपला नहीं करेगा। आप रखवा के चले जाते हो सफर में कहीं भी, एतमाद करते हो आप उसके ऊपर। तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि जब इनके पास कोई अमानत रखवाई जाती है ना, तो ये अपने ट्रस्ट को, अपने एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाने देते। ये अपने अमल से साबित करते हैं कि वाकई हम काबिले एतमाद हैं, कि हम पे किसी भी चीज में कोई ट्रस्ट किया जाए, कोई राज हमें दे दिया उसे फाश नहीं करना, तो ये उसमें पूरे उतरते हैं। अब आज बताओ, आज क्या मुसलमान इस मायार पे पूरे उतरते हैं? हदीस में आता है मजालिस बिल अमाना, जब भी हम कोई निजी महफिल में बात कर रहे होते हैं वो भी एक अमानत होती है। आप निजी महफिल में बात करो, अगला जाके उसको पूरी दुनिया में फैला देता है। तो ये कैरेक्टर जो है ना, कैरेक्टर लेस होना, ये बहुत बुरी खसलत है। अभी वो एक टिकटॉक पे एक वीडियो आई ना, वो जो बनाते हैं मुंह पे लाल रुमाल, लाल वो डाल के बड़े जबरदस्त चीजें बना रहे होते हैं, उसमें एक बच्चे ने अपनी अम्मा से कहा, नहीं अपने अब्बा को फोन किया कि अम्मा की बर्थडे मना रहा हूं, सरप्राइज दूंगा, अम्मी को नहीं बताना। अब्बू ने ऑफिस में अम्मी को फोन किया कि तुम्हारी बर्थडे कर रहा है, सरप्राइज दे रहा है, लेकिन मेरे बेटे को नहीं बताना कि मैंने तुम्हें बता दिया है, मेरे बेटे को नहीं बताना कि मैंने तुम्हें बता दिया है। शौहर का फर्ज बनता था ना ना बताए। शौहर ने फौरन अपनी बेगम को फोन किया कि मेरे बेटे ने फोन किया है कि तुम्हें सरप्राइज देना चाहता है और उसने मुझे तुम्हें बताने से मना किया है, तो इसलिए बर्थडे में चली जाना, लेकिन बेटे को यह ना बताना कि मैंने तुम्हें बता दिया है। अम्मा कहां पेट में रखती बात। अम्मा ने फौरन बेटे को फोन किया, कमबख्त तूने, यानी हां बेटा तुमने मुझे सरप्राइज देना था ना, तो तुम्हारे अब्बा ने मुझे बता दिया है कि आज मेरी बर्थडे है, लेकिन अब्बा ने यह कहा है, मना किया है कि यह बेटे को नहीं बताना, लिहाजा अब्बा को फोन करके ये नहीं बताना कि मैंने तुम्हें बता दिया है। बेटा भी पेट का हल्का, उसने अब्बा को फोन किया कि आपने अम्मा को क्यों बता दिया, लेकिन अब अम्मा को नहीं बताना कि मैंने आपको बताया और फिर आपने अम्मा को बताया और अम्मा ने मुझे बताया, समझ रहे? अम्मा को नहीं बताना कि मैंने आपको बताया कि आपने अम्मा को बताया। तो ये चक्कर चल रहा है। फिर अब्बा फोन कर रहे हैं, जब मैंने मना किया था बेटे को नहीं बताना तो तुमने क्यों बताया? अब बेटे को ये नहीं बताना कि मैंने तुम्हें बताया और तुमने फिर बेटे को बताया और फिर बेटे ने मुझे बताया, ये बेटे को नहीं बताना। तो ये चक्कर चल रहा है, फिर यही चल रहा है कि तुम उसको नहीं बताना कि मैंने तुम्हें बता दिया कि उसने मुझे बता दिया कि उसने तुमने उसको बताया और क्यों बताया कि मैंने तुम्हें बताया है। ये मार्केट में होता है कि नहीं होता? ये चल रहा है मार्केट, तो मार्केट में यही चल रहा है। कोई राज राज नहीं रहा, फौरन पेट में गुदगुदियां होना शुरू हो जाती हैं कि जाके बताएं किस कैसे यार किसी को। तो अल्लाह कहते हैं ईमान वाले लोग जो हैं वो अमानत की रियायत करते हैं, कोई बात किसी को बता दी अपनी खुफिया बात सीने में लेके रखते हैं, उसको किसी के सामने जाहिर नहीं करते। नदीम शाह एक शायर है इंडिया के, बड़ा अच्छा शेर है, वो कहते हैं पत्थरों से कहो राज़े दिल ये ना देंगे दगा आपको। पत्थर जो है ना बुद्ध बन के खड़ा रहेगा सारी जिंदगी, उसके सामने जो मर्जी बोलोगे दगा नहीं देगा। ए नदीम आज के दौर में आदमी का भरोसा नहीं, ए नदीम आज के दौर में आदमी का भरोसा नहीं। इसका एक और शेर सुना देता हूं, शुरू में आप खुश होंगे आखिर में फिर परेशान हो जाएंगे। कल वो मेरे भी आंगन में थी जिसपे गुरूर, मुझे बहुत पुराना हो गया ना सुना हुए, कल वो मेरे भी आंगन में थी जिसपे गुरूर तुझको है, कुछ इस तरह का शेर है जिसपे, क्या है शेर किसी को याद है तो सुनाओ। कल वो मेरे भी आंगन में थी जिसपे तुझको गुरूर आज है। अब आप परेशान खुश के यार पता नहीं कौन थी आंगन में। कल वो मेरे भी आंगन में थी जिसपे तुझको गुरूर आज है, कल वो शायद तुझे छोड़ दे इस खुशी का भरोसा नहीं। यानी जिन खुशियों पे आज तू इतरा रहा है, दौलत शोहरत मजे की लाइफ, इस पे इतरा मत, कल वो मेरे आंगन में थी और मैं भी ऐसे ही गुरूर करता था, आज उन खुशियों ने मुझे छोड़ दिया, कल तुझे भी छोड़ सकती है, तो इस खुशी का कोई भरोसा नहीं है। देखो ना इंडिया में जहाज तबाह हो गया, सारे खुश खुश जा रहे थे लंदन जा रहे हैं, इंजॉय करेंगे लाइफ को, बेचारा एक शख्स आया अपनी पूरी फैमिली को परिवार को खानदान को लेके जा रहे हैं, सेल्फियां बना रहे हैं सब लोग, धड़ाम से जहाज गिरा, सब खुशियों को आग लग गई। और इससे हमें क्या इबरत मिलती है, सब कुछ किसके हाथ में है भाई? अल्लाह के हाथ में। और देखो आपने मोटिवेशनल स्पीकर से सुना होगा कि जो टाइम पे काम करते हैं हमेशा कामयाब वही होते हैं। सक्सेसफुल होने की, कामयाब लोगों की जो सात बड़ी अलामतें हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी सात अलामतें गुरुओं ने लिखी हैं कि कामयाब, उनमें एक ये भी है कि ये टाइम के पाबंद और ये सब चीजें। वो जो एक लड़की बची है ना जहाज में तबाह होने से, वो सिर्फ इसलिए बची है कि टाइम की पाबंद नहीं थी वो, समझ रहे हैं? इंडिया का जो जहाज उड़ा और 3-4 मिनट के बाद ही वो गिर के तबाह हो गया, उसमें एक बंदा तो वो तो अल्लाह ने बचा लिया, पीछे से तुम से निकल गया वो, अल्लाह उसको जिंदगी दे, लेकिन एक लड़की बच गई। क्यों बची है? टाइम पे नहीं पहुंची थी। तो कहां गई वो सारी कामयाबी और सक्सेसफुल लाइफ के बुनियादी उसूल कि आप हर काम परफेक्ट करें, टाइम पे करें, आप कामयाब होंगे? ना 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 ना, कुछ लोग बगैर टाइम के काम करें तो कामयाब हो जाते हैं, टाइम पे करें तो बेड़ा गरक। तो वो तो टाइम पे नहीं पहुंची, लेट होने की आदत होगी, आदत होगी लेट होने की, वरना लगता नहीं है कि एयरपोर्ट भी कोई बंदा लेट हो जाए, एयरपोर्ट का तो पता होता है भाई इतने पहले पहले पहुंचना है। तो टाइम पे नहीं पहुंची और अल्लाह का फजल हुआ। इससे हमारे पाकिस्तानी नौजवानों को कितनी मोटिवेशन मिली है कि सुबह जल्दी उठना और रात को टाइम पे सोना, ये नाकाम लोगों की अलामतें। जो थोड़ी सी मोटिवेशन मिली थी ना उसका भी बेड़ा गर्क हो गया। तो लेकिन उसका जवाब मैं आपको देता हूं, इसका जवाब किसी के बाप के पास भी नहीं है, इसका जवाब सिर्फ इस्लाम के पास है, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। भाई आप कोई भी आपको समझा रहा हूं ना टाइम पे की पाबंदी करें तो आप कामयाब होंगे, सक्सेसफुल लाइफ है, तो आप बताते हैं सर उसने तो टाइम की पाबंदी करती तो आज जा चुकी होती, उसकी तो सारा विजन की ऐसी की तैसी, उसको तो बचाया किस चीज ने? टाइम की पाबंद नहीं है। तो इसका जवाब इस्लाम ने दिया है, इस्लाम ने यह दिया है कि आप कामयाबी के असबाब के पाबंद हैं, کامیابی کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کریں. اس پہ آپ کو وہ کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. اللہ کی مرضی اس کامیابی میں ناکام کر دے، ناکامی میں کامیاب کر دے، یہ اللہ کا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں ہے. آپ کامیابی کے اسباب اختیار کریں، پھر ناکام بھی ہو گئے تو اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی ناکامی نہیں ہے، میں کامیاب کر دوں گا. اصل آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. دنیا میں کامیابی کے اسباب اختیار کرنے والے بہت دفعہ فیل ہو جاتے ہیں، اور ناکامی کے اسباب اختیار کرنے والے بہت دفعہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بظاہر ناانصافی ہے کہ اللہ جو ٹائم کے پابند تھے وہ مر گئے، اور جو سست دیر سے اٹھے وہ بچ گئے. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے ساتھ. بھائی ایکسیڈنٹ نہ بھی ہوا ہوتا، سست بھی ہوتی تو آج بچنا تھا اس نے، صحیح ہے نا؟ آج اس نے بچنا تھا. تو یہ اللہ پہ ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ اللہ جو ٹائم کے پابند ہیں ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا، اور جو ٹائم کے پابند نہیں ہیں، لیٹ پہنچ رہے ہیں، سست ہیں، وہ کامیاب ہو رہے ہیں. اس کا مطلب سست بننا چاہیے. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ غیر مسلم کے پاس تو کوئی جواب، وہ کہے گا لک تھی بھائی، ایک لک تھی، کیا کر سکتے ہیں. اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ تم جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ کامیابی ہے نہیں، اور تم جس چیز کو ناکامی سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ ناکامی ہے نہیں. اصل کامیابی آخرت کی ہے. جو چست لوگ ہوتے ہیں اور اپنی چستی کو صحیح سمت میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں آخرت کے لیے، تو بے شک وہ دنیا میں ناکام ہو جائیں، آخرت میں کیا ہیں؟ کامیاب. اور جو سست لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہو بھی جائیں، آخرت میں کیا ہیں؟ ناکام. آخرت میں سست جنت میں تھوڑی جائے گا، سست نہیں جائے گا جنت میں. دیکھو حدیث میں آتا ہے ایسے پیغمبر بھی دنیا میں آئے جنہوں نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا، ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا اور ان کو قتل کر دیا گیا. دنیاوی لحاظ سے وہ اپنے ویژن میں کامیاب ہوئے یا ناکام؟ بولو، دنیاوی لحاظ سے کیا ہوئے؟ وہ ناکام. بھائی ایک شخص تو لے آتا نا ایمان، ایک بھی نہیں لایا اور قتل کر دیا گیا، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ کامیاب ہے بھائی. اور والسماء ذات البروج میں جو اللہ نے بیان کیا، سورہ بروج میں واقعہ، اس میں کیا تھا کہ ایک نوجوان بادشاہ نے کہا، جادوگر تھے نا بادشاہ لوگ، اس کے جادوگر تھے جو لوگوں کو الو بناتا تھا، تو اس سے بادشاہوں کے منجن بھی بکتے ہیں. جیسے پھونکو والی سرکار اپر لیول پہ تعلقات ہیں تو اوپر تک کھانچے چلتے ہیں ان کے. یہ چھوٹے موٹے لوگوں کا کام چھوٹی موٹی پھونکے ہوتی ہے، اتنے بڑے پیمانے پر ہول سیل کے حساب سے اگر کوئی پھونک مار رہا ہے تو اس کا مطلب اونچی سطح پہ، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ ہمارے سیاسی لیڈر ہو، کہیں نہ کہیں اس کا کھانچا چل رہا ہے. اتنی پھونک کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، پوری نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے ان کے رابطے ہوتے ہیں، اور پھر سیاسی لیڈروں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے ان کے رابطے ہوتے ہیں، تو وہاں سے ان کو پائپ لائن ہوتی ہے، وہاں سے پھونک ان میں بھری جا رہی ہوتی ہے اور یہ آگے پارسل کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنے اونچے پیمانے پر یہ ہوتا نہیں ہے، اپر لیول میں اتنے تعلقات کے بغیر. چھوٹے موٹے عامل یہ ادھر ادھر چتونگڑے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے. تو اب کیا ہے، اب جو بادشاہ تھا نا اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ جادوگر کو بلایا، پھوکوں والی سرکار جو اس زمانے کی تھی، کیونکہ وہ بھی شعبے دے دکھاتے ہیں نا، یہ بھی دیکھو ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی ہم نے جوڑ دی، لنگڑا تھا ایک دم سیدھا چلنا شروع ہو گیا تھا، یہ سارے شعبے ہوتے ہیں جادوگروں کے پاس ہوتے ہیں شعبے. تو بادشاہ نے جادوگر کو بلایا اور کہا کہ میں، جادوگر نے کہا کہ دیکھو میں مرنے والا ہوں، تو آپ کوئی بندہ دے دو جس کو میں یہ جادو سکھا دوں، یہ شعبے بازیاں، کوئی نوجوان دے دو، جوان خون ہو تاکہ کچھ عرصہ چل تو سکے نا، وہ تو آپ کی کے کام آئے گا، یہ منجن دبا کے چلتا رہے گا آپ کا. تو ایک نوجوان کو بادشاہ نے دے دیا، کسی گھر غریب فیملی سے لیا ہوگا، بھائی بے روزگار ہے اس کو سکھاؤ. یہ صحیح حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں سورہ بروج کی تفسیر میں. تو اب ہوا کیا کہ جب وہ جو جادوگر تھا نا، جو نوجوان تھا، اس نے جادو سیکھنا شروع کیا اس زمانے کی پھونکوں والی سرکار سے کہ یار صرف یہ پھونک آپ کے، کل مرنا بھی ہے نا، پھونک نکلے گی باہر ایک نہ ایک دن، کتنی بھی پھونکوں کے سلینڈر بھروا لو، موت کا فرشتہ آتا ہے تو اچھے اچھوں کی پھونک نکال دیتا ہے. تو اس سے پہلے کہ بادشاہ کی پھونک نکل جائے، किसी और को ये फूंको वाला फन सिखा दिया जाए। तो जादूगर बुढ़ा हो गया था, उसने फिर उस नौजवान को सिखाना शुरू किया। अब अल्लाह की कुदरत यह कि वो बच्चा जब अपने घर से निकल के आता तो रास्ते में एक राहिब, उस दौर में ईसाई मजहब बरहक मजहब था ईसाइयत, उसमें राहिब जो ईसाइयों में बुजुर्ग हुआ करते थे, तो रास्ते में एक बुजुर्ग थे जो बाबे हर दौर में रहे हैं, ये ज़हन में रखना। जो कहते हैं ना बाबों को नहीं मानते वो इस्लाम ही को नहीं मानते। हाँ, दो किस्म के बाबे होते हैं, गुरे बाबे और एक नेक बाबे। तो बाबों से ताल्लुक के बगैर दीन नहीं आता मेरे भाई। हाँ, बाबा सही होना चाहिए, खुद सही अकीदे पर हो, लेकिन ये कहना मेरा कोई बाबा ही नहीं है तो इसका मतलब ये गुमराह है। तो रास्ते में एक बाबा था राहिब अल्लाह वाला। तो ये नौजवान जब जादूगर के पास आता तो आते हुए भी उस राहिब से मिलता हुआ आता और घर जाते हुए भी राहिब से मिलता हुआ आता। जब जादूगर के पास आता थोड़ी देर हो जाती, जादूगर पूछता देर से क्यों आए हो, तो ये कुछ गोल मोल बात कर देता घर में देर हो गई, और जब घर देर से पहुंचता तो वहां गोल मोल बात कर देता, घर वालों को नहीं बता रहा था मैं राहिब के पास जा रहा हूं, क्योंकि घर वालों को बता देता घर वालों ने पकड़ के कूटना था। घर वालों ने फूंको वाली सरकार के पास भेजा है और आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास आ रहे हो बीच में सरकार के खिलाफ बातें सुनने के लिए, तो घर वालों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? खैर, हम तो बुजुर्ग नहीं है, वो वाकई बुजुर्ग था, यानी कोशिश कर रहे हैं बुजुर्ग बनने की। तो अब वो राहिब के पास दो दफा और एक दफा किसके पास? बोलो, जादूगर के पास। तो इस नौजवान को राहिब की बातें ज्यादा अट्रैक्ट करने लगी कि यार इसकी बातों में तौहीद है, नमाज है, रोजा है, सिला रहमी है, ऊटपटांग फेंकता नहीं है, लंबी लंबी है, लॉजिक की बात करता है। और ये जो जादूगर है ये लालची भी होते हैं, झूठे भी होते हैं, कज्जाब भी होते हैं और बहुत सारी फोहश हरकतों में भी मुबतला होते हैं। कितनी लोगों की इज्जतों को लूटा है ना इन जादूगरों ने। तो मैं क्या बात कर रहा था, हां, तो वो जो नौजवान था इस जादूगर के पास आता और जादूगर इसको यही फूंको वाली सरकार बनाने की कोशिश करता। तो नौजवान को अंदाजा हो गया कि ये झूठा मक्कार, ठीक है मैं ये फन सीख लूंगा तो पैसा तो कमा लूंगा, बादशाह का कुर्ब भी मुझे मिल जाएगा, लेकिन सही बात किसकी है? राहिब की, जो अल्लाह वाला है, नेक है, तहारत है, पाकीजगी है। तो ईसाई मजहब पर उसका दिल आ गया कि भाई ये ठीक है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो जो है इस्लाम कबूल किया, जो उस जमाने का इस्लाम तो ईसाइयत ही थी ना, ईसाइयत कबूल की उसने और इबादत गुजार बन गया। अब जब इबादत गुजार बना तो उसके हाथ पे करामतें जाहिर होना शुरू हो गई। यहां जहलम को बहुत गुस्सा आएगा कि ऐसा हुआ क्यों, लेकिन ये हदीस से साबित है, सही हदीस से। मैं कहता हूं उस जमाने के बुजुर्ग जो ईसाई थे, नौजवान जो हजरत ईसा के उम्मती थे, ईसा इब्ने मरियम का उम्मती नेक बने, उसके हाथ पे करामत जाहिर हो सकती है। और इस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नेक बने और नौजवान ना हो बल्कि बूढ़ा हो जाए उसी नेकी में, उसके हाथ पे करामत अगर जाहिर हो तो आप कहते हैं कहानियां सुनाते हैं, बाबों के किस्से सुनाते हैं, शिर फैलाते हैं। भाई आप कुरान और सुन्नत को फॉलो नहीं कर रहे, आपको बुजुर्गों से चूंकि बोझ है, लिहाजा उनकी कोई करामत आपके सामने आती है तो अब आपको ये होता है मेरी तो कोई करामत हो नहीं रही और हमारे तो सिरे से कोई बुजुर्गी नहीं है, इनकी क्यों हो रही है? इस बेस पे आप इंकार कर रहे होते हो, इस बेस पे आप। हाँ, इसमें ड्रामेबाजी भी होती है, झूठ किससे भी सुनाए जाते हैं, लेकिन सुनाने वाला अगर मुस्तनद है और जिसके बारे में सुनाया जा रहा है उसका नेक होना साबित हो जाए, फिर उस करामत का इंकार करना ये पैगंबर की तौहीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्यों तौहीन है? कि भाई ईसा के उम्मती से तो करामतें जाहिर हो सकती हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती से करामत जाहिर नहीं हो सकती। इसका मतलब आप हजरत ईसा का मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ा रहे हो। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को फॉलो करने वाले तो दुनिया में होंगे करामतें, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वालों के हाथ में कुछ नहीं होगी करामत। तो ये सारा किस्सा ही गलत है मेरे भाई, जो इन लोगों ने मंजन बेच रहे हैं ना। हाँ, इसमें इतदाल जरूरी है कि तौहीद परस्त हो वो बुजुर्ग नेक हो और उसकी करामत का सुदूर मुस्तनद जरिए से साबित हो। ऐसा नहीं है कि कोई बैठ के बना रहा हो, बैठ के मुस्तनद जरिया हो, बयान करने वाला काबिल एतमाद हो। तो अब उस नौजवान के हाथ पे सही हदीस के मुताबिक करामतें जाहिर होना बोलो शुरू। क्या करामतें हो रही हैं? वो शख्स जो पैदाइशी गंजा हो उसके सर पे हाथ रखे, बाल निकल आए। देखो, जब भी इल्मी पॉइंट बीच में आते हैं ना तो मैं बयान करता हूं, मैं छोड़ता नहीं उसको। सभी एक एक वाक्य में मुझे कई कई हफ्ते निकल जाते हैं बयान करने में। इससे पता चलता है टिंड ये आजमाइश है, बाल अल्लाह की नेमत। क्या ख्याल है? आज बाज जगहों पे टिंड को नेमत समझा गया है, बाज खानकाहों में हर वक्त टिंड करा के रखते हैं और इसको सवाब भी समझते हैं। इस्लाह की नीयत से किसी हद तक तो ठीक है ये, ताकि शोबाजियों का उनसर ना आए, लेकिन ये हमेशा के लिए इसको मामूल बना लेना ये ठीक नहीं है। नबी ने सिर्फ हज उमरे के मौके पे हल्क कराया है और वहां भी शरीयत ने इजाजत दी है कि कसर भी कर सकते हो, अगरचे कम फजीलत है, बाल कटवा भी सकते हो। तो इसलिए जिस चीज को शरीयत ने लाजिम ना किया हो मेरे भाई, उसको अपने ऊपर मुसल्लत नहीं कर लेना चाहिए। दीनदारों को चाहिए इस जमाने में हुलिया ऐसा रखें कि देखने में अच्छे लगे, टिंडे मिंडे घूमेंगे और फिर कुर्ते भी इतने लंबे लंबे, दो दो चार चार आदमी एक तंबू में आ जाए, शामियाने में आ जाए, लोग कहते हैं यार ये क्या, हम दीनदार बन के ऐसे बनेंगे? नॉर्मल ड्रेस पहनो जैसे सारे पहनते हैं, अच्छे लगो देखने में। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह इसके बहुत खिलाफ थे कि खानकाहों में एक मखसूस लिबास, मखसूस टोपी, फरमाते थे इससे धड़ेबंदी फैलती है, फिरकावारियत फैलती है। जैसे सब मुसलमानों का लिबास है आपका भी वैसा ही होना चाहिए। मैंने एक अरबी को देखा शलवार कमीज पहन के घूम रहा है पाकिस्तान में, हालांकि अरबी तो नहीं छोड़ते अपना लिबास। मैंने कहा क्यों कह रहे हैं यार सबने ये पहना हुआ, मैं अलग सही नमूना नजर आ रहा हूं, तो उसके ख्याल में ये नहीं, उसके बात को अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं। तो अगरचे मेजोरिटी अरबियों की ऐसी नहीं करती, लेकिन बात ये भी कर रहे होते हैं यार जैसे सब रह रहे हैं उसी तरह रहो, तो अपना एक अलग से ड्रेस बना लेना, फिर इतना लंबा कुर्ता, इतना चौड़ा, चार चार आदमी उसमें आ जाए, ये ठीक नहीं है। नॉर्मल जैसे सब रहते हैं ऐसे रहो, हम मुसलमान हैं। ये चीजें फिर आगे बढ़ती हैं, पहले ड्रेसिंग अलग होती है, फिर पीर परस्ती शुरू होती है, फिर अपनी मस्जिद भी अलग हो जाती है। इधर मस्जिद बनी हुई है उसी के साथ अपनी मस्जिद बना लेंगे, नमाजी टूट गए। जब एक मस्जिद है सब उसमें नमाज पढ़ रहे हैं, आप भी आगे पढ़ लो भाई। नहीं जी, हमारे हजरत जी के हिसाब से ये वाला इमाम सेट नहीं है। इमाम आपके हिसाब से दुनिया में कोई भी सेट नहीं हो सकता। जोड़ पैदा करने के लिए, इज्तिमाइयत के लिए इनफिरादी खामियों को बर्दाश्त किया जाता है। एक मस्जिद जब महल्ले में है तो कोई बात नहीं, इमाम थोड़ा आड़ा तिरछा है बर्दाश्त कर लो, इज्तिमाइयत सब एक जगह खड़े होकर नमाज पढ़े। इधर एक मस्जिद साथ वाली गली में दूसरी मस्जिद, जिसको जहां मौका मिलता है एक मस्जिद बना लेता है चाहे जरूरत ना भी हो, तो ये गलत चीज है। तो अब वो क्या था? हाँ, वो राहिब हाथ फेरता जिसके सर पे बाल ना हो, करामत के तौर पे क्या निकल आते, बाल निकल आते। पैदाइशी नाबीना की आंखों पे हाथ रखता और उसकी आंखें, बोलो ना क्या हो गया, वापस लौट आती। और इस तरह की कोढ़ के मरीज, जो उस जमाने में ये बीमारी नाकाबले इलाज थी, फूंक मारता या हाथ, वही पूरे अल्फाज हदीस के याद नहीं है, तो वो ठीक हो जाता। लोगों ने कहा ये तो भाई बहुत बड़ा जादूगर बन गया है, जादू उसको, लोगों को क्या पता छप्पड़ में किसके पास जा रहा है, राहिब के पास जा रहा है। यहां भी एक और बात, हो सकता है कोई जब हम अपने बुजुर्ग की करामत बयान करते हैं तो लोग, बाज लोग ये भी कहते हैं सहाबा के हाथ पे तो ये करामत जाहिर हुई नहीं। और शेखुल हदीस मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के वालिद 2 साल में एक पाव कुरान पढ़ने लगे, एक पाव पारा, सहाबा में तो ऐसा हुआ नहीं। करामत में ये नहीं होता कि जिसके हाथ पे करामत जाहिर हो रही है वो अपने बुजुर्ग से अफजल हो। बाज दफा छोटे के हाथ पे करामत होती है, बड़े के हाथ पे नहीं होती। इस पे मैं कई बार बयान कर चुका हूं, किया तो ये टॉपिक पूरा चेंज हो जाएगा मेरा। हालांकि वो राहिब की दावत पे दीन पे आया था तो राहिब के हाथ पे तो ये करामत जाहिर नहीं हो रही थी, शागिर्द के हाथ पे हो रही है। तो इससे ये नहीं पता चलता उस नौजवान का मकाम उस राहिब से बुलंद हो गया था। भाई अल्लाह ने किसी से कोई खास तर्ज पे काम लेना होता है तो उसके हाथ पे अलग वो करामत जाहिर कर देते हैं, किसी से अलग काम लेना होता है नौयत का उसके हाथ पे जाहिर नहीं करते। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती के हाथ पे करामत जाहिर हुई कि तख्त आ गया सेकंडों में, सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं लेकर आए, ना ला सके वो। तो अब क्या है कि उस राहिब के हाथ पे क्या भाई लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों ने कहा भाई ये तो बड़ा पहुंचा हुआ जादूगर बन गया है, अब आओ जी मेरा ये काम कर दें, मेरा ये काम कर दें। वो तो फूको वाली सरकार से भी क्या हो गया आगे निकल। वो नौजवान चूंकि एक नंबर था, उसने कहा नहीं भाई ये कोई जादू नहीं है और ये मैं कर ही नहीं रहा, ये कौन कर रहा है? अल्लाह। करामत की एक जाहिरी अलामत पता है क्या होती है? जिस बुजुर्ग जो शोबदे दिखाता है ना, वो चाहता है लोग मेरे गिर्द इकट्ठे हों। और पैगंबर जो मोजज़े दिखाते हैं या औलिया जो करामतें दिखाते हैं, वो चाहते हैं कि लोग किसके पास जाएं? अल्लाह के। ये बहुत बड़ा फर्क है। वो अपना मुड अपना जो है मोतकिद नहीं बनाते, ये अपने आप को सजदा नहीं करवाते, बल्कि वो कहां लेके जाते हैं? अल्लाह की तरफ। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे मौजज़े जाहिर हुए, तो हम सजदा नबी की कब्र पे करते हैं या बैतुल्ला में? बैतुल्ला में। तो नबी ने उन मौजज़ों के लिए माज़ अल्लाह कैश नहीं करवाया अपने लिए, बल्कि वसीयत करके गए कि अल्लाह यहूद और नसारा पे लानत करे कि जो अपने अंबिया की कब्रों को सजदा गाह बना लेते हैं, मेरी कब्र को सजदा गाह मत बनाना, मेरी कब्र को ईद की तरह मेले ठेले मत करना, जैसे मजारों पे उर्स होते हैं, ये काम मत करना। तो अपनी कब्र को आपने शिर्क से महफूज रखा। सहाबा चाहते थे कि आपको सजदा करें, आपने फरमाया ना 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 ना, ना। अल्लाह के सिवा किसी को सजदा हलाल नहीं है, और अगर अल्लाह परमिशन दे देता ना तो भी मैं ये नहीं कहता मेरे सामने सजदा करो, मैं बीवी को कहता शौहर के सामने सजदा करो। मैं बात समझा पा रहा हूं? जो जाहिल पीर होता है ना, जाहिल, वो सबसे कटा के अपनी तरफ लेकर आता है। वो कहता है शरीयत बाद में, मुंह से बोलेगा अल्लाह रसूल पहले, लेकिन एटीट्यूड जो उसका होगा ना, जो पैगाम मैसेज जो डिलीवर कर रहा होगा, जो लोगों की जहन साजी होगी, वो जहन साजी ये होती है कि अल्लाह को हटा के इनके पीछे लग जाओ। यहां मैं उन पीरों के खिलाफ भी बोलूंगा जो अपने मुरीदों को अपने मां बाप से कटा देते हैं, इतनी खिदमत अपनी करवाते हैं, अपने फजाइल इतने बताते हैं कि लोग बाप को बेवकूफ समझते हैं और पीर साहब को क्या समझते हैं? बाप बना लेते हैं। कुरान और सुन्नत में मेरे भाई जिस तरह मां और बाप का अल्लाह ने हक बयान किया है, इस तरह पीर और मुर्शिद और उस्ताद का हक बयान बोलो नहीं किया। आज उस्ताद बाज दफा अपने फजाइल सुना रहा होता है, देखें उस्ताद तो रूहानी बाप होता है, एक जिस्मानी बाप होता है, ये मैंने सुनी है खुद तकरीरें, जिस्मानी बाप तो तुम्हें जो है आसमान से जमीन पे ले आता है, आलम अरवा में थे तुम्हें कहां ले आया? जमीन पे। और रूहानी बाप जो टीचर होता है, जो पीर मुर्शिद होता है, वो तुम्हें जमीन से आसमान की बुलंदियों पर तरक्की देके ले जाता है। अगर वो जिस्मानी बाप आसमान से जमीन पर ना लेकर आता तो तेरा बाप उसको दोबारा आसमान पर लेके जाता, फजूल आदमी। तो पैदा करने का सबब तो बाप बना है ना, मां और बाप बने हैं। छातियों से दूध 2 साल मां ने पिलाया है, इसकी गंदगियां मां ने साफ की हैं, इसके पैंपर मां ने चेंज किए हैं, दिन को दिन रात उसने कुर्बान कर दिए तेरी खातिर। मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमाहुल्लाह ताला भी तसव्वुफ में बड़े इमाम समझे जाते हैं, पीरों मुर्शिद, मेरे दादा पीर है मौलाना अशरफ अली थानवी। मैं हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब से बैठू ना तो, और हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पीर कौन थे? अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। तो वो फरमाया करते थे, आजकल के पीर क्या करते हैं, ऐसा मुरीद का जहन बना देते हैं, फिर उस पर उन्होंने एतराज किया, फरमाया लो थे किसी के, हो किसी और के गए। यानी पैदा किसी ने किया, पाल पोस के बड़ा किसी ने किया, और गुलाम किसी और के बन गए। तो पीर ओरिजिनल पीर जो होगा ना, जो सही पीर और मुर्शिद होगा, वो आपको आपके मां बाप से कटाएगा नहीं। उससे बैत होने के बाद, उससे इस्लाही ताल्लुक रखने के बाद, आपके दिल में अपने मां बाप की वैल्यू कम नहीं होगी, बल्कि और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर पीर से बैत होने के बाद, ठीक है पीर की खिदमत भी करो, वो भी जरूरी है रूहानी तरक्की के लिए, तो लेकिन उसकी खिदमत के साथ साथ अपने मां और बाप की खिदमत का भी जज्बा पैदा हो रहा है, इसका मतलब ही एक नंबर पीर है। और अगर उसके साथ ताल्लुक रखने के बाद अब्बा बेवकूफ लगने लगे और अम्मा आपको फालतू लगने लगे, उनको टाइम पीरों के साथ सारा दिन बैठा रहेगा खानकाह में पड़ा हुआ, अब्बा के पास 5 मिनट बैठने का टाइम नहीं, हत्ता के बीवी के साथ आपका मामला कैसा होगा ये भी अब्बा अम्मा नहीं बताएंगे, जिनकी बहू है ये कौन बताएगा? पीर। मैं तो भुगता हुआ हूं ऐसे केसेस, इसलिए बता रहा हूं। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब से किसी ने पूछा कि अगर पीर एक बात का हुक्म दे, जो जायज बातें हों वैसे वो बात हो, और मां बाप उसके खिलाफ हुक्म दें, तो किसकी बात को फॉलो किया जाएगा? हजरत ने फरमाया अगर वो एक नंबर पीर होगा तो वो ऐसा करेगा ही नहीं, उसको जब पता है कि मां बाप की ख्वाहिश कुछ और है तो वो मां बाप की मर्जी पे चलने का हुक्म देगा, वो होगा ही नहीं जो मां बाप की मर्जी के खिलाफ आपको लेके जा रहा है। हां ये जायज और मुबाह चीजों में, जिन चीजों का ताल्लुक तरबियत से है वो एक अलग बात है भाई, तरबियत या इलाज से जिन चीजों, बार दफा डॉक्टर आपको इलाज बताता है कि आपको पैनाडोल खानी पड़ेगी, अब्बा कह रहे हैं नहीं खाओ, तो अब जिस्मानी इलाज करना है ना, तो यहां किसकी चलेगी? डॉक्टर की चलेगी, वो कहेगा फिर अब्बा से इलाज करा ले भाई। تو جن چیزوں کا تعلق اصلاح سے ہے, مثال کے طور پر آپ کو اللہ نہ کرے فوش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی, اب آپ کو پتا ہے یار میں کمپیوٹر پہ تنہائی میں بیٹھوں گا تو میں خراب ہوں گا, یا میں جب بھی کمپیوٹر پہ آ کے بیٹھوں گا میں غلط چیزوں کی طرف چلا جاؤں گا, اب ابا کہہ رہے ہیں بیٹھ تو کیوں صوفی بنتا جا رہا ہے بیٹھ, آپ کو پتا ہے میں بیٹھا تو گیا, پیر صاحب نے کہا کچھ وقت تک آپ پر اینڈرائڈ موبائل استعمال کرنے پر بھی پابندی ہے, پہلے آپ کو برائی سے بچنے کی عادت ہو جائے پھر آ جانا. تو ایسے موقع پہ بھی پیر و مرشد کی بات کو مانا جائے گا, کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے, اصلاح سے اس کا تعلق ہے. ورنہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا جو مقام دیا ہے, خدا کی قسم جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی اس معیار پہ شاید آج کوئی بھی پورا نہیں اترتا, آج شاید اس معیار پہ کوئی بھی پورا نہیں اتر رہا. اور حقیقت میں دیکھو اپنے بچوں کو دیکھو کیسے پالتے ہو, کیسے ان کے رونے پہ روتے ہو, ان کے ہنسنے پہ ہنستے ہو, اور ماں کی محنت دیکھا کرو یار. تو خیر, تو یہ میں بتا رہا تھا کرامتوں سے مجھے یاد آیا, جو اوریجنل سچی مچی کے بزرگ ہوتے ہیں جب ان کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے تو وہ اپنی نفی کرتے ہیں, بھائی ہم کچھ نہیں ہیں, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پہ کچھ یہ چیزیں ظاہر ہو گئیں, تو کس کی طرف جانا ہے بھائی, اللہ کی طرف جاؤ, اسی کی عبادت کرو, اسی کی طرف جاؤ. تو وہ نوجوان نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا, اس نے بھی کیا لوگ آ کے کہتے تم تو یار بڑے زبردست بن گئے, اس نے کہا بھائی میرا کچھ بھی نہیں ہے, نہ میں گنجے کے سر پہ بال اگا سکتا ہوں, نہ میں کوڑ کے مریضوں کو, میں تو صرف ہاتھ لگاتا ہوں اور کرتا کون ہے اللہ, تو کس کی طرف جاؤ اللہ کی. تو اللہ نہ اس سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہ رہے تھے اس نوجوان سے, کہ تاکہ جب یہ کرامتیں ظاہر ہوں تو لوگ کس پر ایمان لائیں, اللہ پہ. اس کی ایک آسان مثال دوں, جب انسان شہیدوں کے خون میں خوشبو سونگتا ہے تو شہید سے عقیدت بڑھے نہ بڑھے حق کے لیے جان دینے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے, کیا خیال ہے, یعنی اللہ کے لیے جان دینے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ وہ کرامت ہے جس سے انسان اس شہید کی طرف نہیں جا رہا, کدھر کو جا رہا ہے اللہ کی طرف. تو یہ فرق ہے جادو میں اور کرامت میں. تو اس نوجوان نے کہا کہ بھائی میں نہیں, بھائی یہ کون کرتا ہے, بھائی یہ اللہ کرتا ہے. اب بادشاہ کو بھی پتا چل گیا بھائی یہ تو بہت بڑی چیز بن گیا یار, ہم نے کون کون سے تیل ایجاد کر کے دیکھ لیے بال نہیں آ رہے. تو اس کو لایا گیا, بادشاہ نے کہا بھائی تیرا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے. تو اس نے کہا میں نہیں کرتا, میں جادو نہیں ہے یہ, میں ایمان لے آیا ہوں, ایک خدا کو مانتا ہوں, تجھے رب نہیں مانتا. بادشاہ کو غصہ آیا, اس نے اس کو لالچ دی, ڈرایا, دھمکایا, ہر طرح سے کوشش کی کہ یہ عیسائی مذہب کو چھوڑ دے, یہ نہیں مانا. تو بادشاہ نے پھر کہا تین واقعات ہیں اس میں, تین طرح سے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ہر طرح سے اللہ کی کوئی اللہ کی طرف سے کوئی کرامت ظاہر ہوئی اور وہ قتل سے بچ گیا. بادشاہ پریشان تھا کہ لوگ ایمان لا رہے ہیں اس کی کرامتوں کو دیکھ دیکھ کے, لوگ سارے اللہ والے بن رہے ہیں, بادشاہ کے دین کو لوگ چھوڑ رہے ہیں. بادشاہ کو اندازہ ہو گیا یہ سب مجھے خدا ماننا چھوڑ دیں گے اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے, میری تو حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. تو بادشاہ نے پھر یہ کیا, بہت پریشان, ہر طرح سے جب قتل کی کوششیں ناکام ہو گئی نا, اب یہ ہے اس نوجوان نے کہا دیکھو جب اللہ کسی کو بہت محیر العقول واقعات دیتے ہیں نا تو پھر اس کی آزمائش بھی بہت سخت ہوتی ہے. تو اس نوجوان نے کہا دیکھ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. اب یہ اس نوجوان کا ایک طرح سے فدائی حملہ تھا, صحیح ہے نا, تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں. کتنی بڑی قربانی دی اس نوجوان نے. اب لوگوں میں نا یہ بات پھیل گئی تھی کہ اس کو جس طرح بھی پہاڑ پہ لے کر گئے, زلزلہ آیا وہ لوگ گر گئے یہ بچ گیا, کشتی میں لے کر گئے طوفان آیا وہ مر گئے یہ بچ گیا. تو اس نے کہا میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں جس طرح سے تو اگر مجھے اس طریقے سے قتل کرے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا. وہ کیا ہے, تو چوک میں ساری دنیا کے لوگوں کو بلا, اپنے ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں, اور مجھے چوک پہ کھڑا کر کے تیر مار اور کہ بسم اللہ و ربی ھذا الغلام, اللہ کے نام سے اور اس نوجوان کے خدا کے نام سے, رب کے نام سے, جب اللہ کا نام لے کے مارے گا میں مر جاؤں گا. نوجوان کو اندازہ تھا کہ جب یہ اللہ کا نام لے گا تو لوگ کہیں گے بادشاہ نے ساری کوششیں کر لیں کچھ نہیں ہوا, اللہ کا نام لیا ہے تو یہ اس کا مطلب کرنے والا کون ہے, اللہ. نوجوان کو پتا تھا یہ جب ہوگا نا تو لوگ بادشاہ کے دین کو چھوڑ دیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے میں نے اتنی بڑی قربانی دی. جو قربانی دینے والا ہوتا ہے وہ دو نمبر نہیں ہوتا, کیوں, پیسوں کے لیے اگر یہ سب کچھ کر رہا ہوتا پھونکوں والی سرکار کہیں شہادت کے لیے نام لکھوائے گی, وہ ناموس رسالت के नाम पे मंजन बेचेंगे, नामू से सारा कहीं भाई अगर मुश्किल हो रही है चलो भाई जाओ जी गजा के लिए कितने लोग हैं। फूंको वाली सरकार कहेगी मैं यहीं से बैठ के मिसाइलों पे फूंक मारूंगा बस। तो इस टाइप की जितनी सरकारें इनमें कुर्बानी क्योंकि खा खा के मुस्टंडे हो चुके होते हैं, मोटे हो चुके होते हैं। तो जितने ये पीर मुर्शिद हैं जो कहते हैं तौहीन, मैं तभी बार बार कहता हूं ना मेरे खिलाफ जो कत्ल के फतवे दिए जा रहे थे उड़ा दो, और मेरे क्या जो भी जिसकी बिचारे की जबान लुड़खड़ा गई कोई ऐसी बात हो गई जो उसको वजाहत का मौका भी नहीं दे रहे होते, तो गलती का एतराफ कर लिया फिर भी माफ नहीं कर रहे होते, तो फिर ये बाज लोग क्या करते हैं उसके बाद भी मार दो और ये कत्ल कर दो। तो भाई तुम खुद क्यों नहीं कर रहे, जन्नत में जाने का तुम्हें शौक क्यों नहीं है, अपने मुरीदों को क्यों मरवा रहे हो। जब तुम्हारा कोई मुरीद कत्ल करेगा केस चलेगा फांसी होगी तुमसे जनाजा पढ़ने आ जाओगे, तो बेहतर यह है कि तुम्हारा जनाजा हो इस दफा। इस दफा किसका जनाजा हो, तुम पे केस चले तुम फांसी पे लटको गैर कानूनी तौर पे किसी को कत्ल करके तुम फांसी पे लटको फिर तुम मरने के बाद हीरो बनो। इनमें से कोई नहीं चाहता कि मैं हीरो बनू, यानी ये वाला हीरो मैं बनू, ये चाहते हैं जिंदा जिंदगी में हम हीरो बन जाए। तो इसलिए जब भी कोई ऐसी बात किया करे ना वो कहें ये पिस्टल लें आप जाके ये काम कर लें, मुरीदों को वरगलाने की कोशिश ना करें। तो इस नौजवान ने तो अपनी जान पेश की, इसने कहा बादशाह तू ऐसे कर, लोगों में हलचल मिच गई भाई ऐसे होने वाला है। बादशाह ने कहा यार मैं पब्लिक को कंट्रोल कर लूंगा, इसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है, इसके साथ तो अल्लाह की मदद है एक दफा ये शहीद हो जाए तो पब्लिक को मैं संभाल लूंगा। लेकिन उसको पता नहीं था कि पब्लिक जब ये वाकया देखेगी ना तो वो बिल्कुल तेरे हाथ से निकल जाएगी। कुर्बानी ये नौजवान दे रहा है। तो इसको किसी सुतून पे लटकाया गया और बादशाह ने अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह व रब्बी हादल गुलाम, अल्लाह के नाम से और इस गुलाम के रब के नाम से जब ये तीर चलाया तीर इसकी कनपटी पे लगा और ये उसी वक्त शहीद हो गया। बाज रिवायात में आता है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के दौर में इसकी खबर खोली गई थी तो तीर का जो जख्म था वो हरा था और उससे खून बह रहा था। शहीदों में बहुत ऐसा वाकयात होते हैं कि 10-10 साल के बाद कब्रें खुलती हैं जिसम भी सलामत होता है खून बह रहा होता है, ये कॉमन है शहीदों में बहुत हुआ ये वाकया। तो उस दिन गामदी साहब से किसी ने सवाल पूछा प्रोफेसर गामदी साहब से कि क्या ये कब्र से खुशबू आना और शहीदों का ये जो कहा जाता है ये बरहक है। तो गामदी साहब ने कहा लोगों के अपने अपने मुशाहिदात हैं, तो मेरा खुद भी मुशाहिदा है लोगों के हैं लेकिन मेरा अपना मुशाहिदा शहीदों के खून की खुशबू। तो ये कब्रों की खुशबू के वाकयात दो चार नहीं है, बहुत हैं ये वाकयात। हाँ इसमें झूठ भी हो सकता है ड्रामेबाजी भी हो सकती है लेकिन बहुत से वाकयात ओरिजिनल हैं सही हैं। खैर तो उस नौजवान ने कहा भाई ये किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ। हाँ वो शहीद हुआ, जहां उसने शहादत पाई है सब लोग अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना ईसा इब्न मरियम रूह अल्लाह, जो भी उस जमाने का कलिमा था वो सारे सैयदना ईसा पे ईमान ले आए, सारे मुसलमान हो गए, जो ईसाई मजहब उन्होंने अख्तियार कर लिया। और उस वक्त ईसाइयत में तौहीद थी, ईसाई हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं कहते थे। तो अब क्या हुआ है? जब ये सब हो गया तो बादशाह ने कहा ये क्या हो गया, ऐकी रोल्ला पै गया, चौधरी सट्टा लै गया। पंजाब में ना इलेक्शन जब थे तो कोई और जीत गया, चौधरी साहब जीत गए, मेहनत किसी और ने की थी, तो उस पर यह पंजाब में शेर लिखा होता था ऐकी रोल्ला पै गया चौधरी सिट्टा लै गया। तो बादशाह ने कहा है कि रोल्ला पै गया, ये तो चौधरी सट्टा लै गया, कोशिश मैं कर रहा हूं और फायदा कौन ले गया, ये तो नौजवान का दीन लोगों ने कबूल कर लिया। तो बादशाह लोग क्या करते हैं ऐसे मौके पे, जुल्म करते हैं। तभी ये जो लोग कहते हैं ना खिलाफत खिलाफत, भाई कुछ चीजों में बादशाही निजाम अच्छा होता है कुछ में जमहूरी निजाम अच्छा होता है। बादशाही निजाम या कोई खलीफा हो वो जब अच्छा होता है जब वो नेक हो परहेजगार हो शरीयत के मुताबिक चला रहा हो, लेकिन अगर उसकी खोपड़ी घूम गई ना तो वो जो जुल्म करेगा ना वो ऐसी की तैसी कर देगा। जमहूरी निजाम में कुछ आवाज तो उठा सकते हो ना, एक आदमी के पास पावर नहीं होती। खैर जी बादशाही निजाम था, बादशाह सलामत ने ऑर्डर दिया उड़ा दो सबको, और जो सरकारी थे बादशाह के फौजी मौजी, तो बादशाह ने खंदकें खुदवाई पूरे शहर में और कहा कि जो भी ईमान ना लेकर आए ना उसको इस आग में डाल दिया जाए। तो लोग फौजी उसके पकड़ पकड़ के लाते रहे, एक एक शख्स को आग में डालते रहे। एक औरत आई जिसकी गोद में बच्चा था, औरत को तरस आता है ना अपने दूध पीते बच्चे को, मैं कैसे लेके आग में छलांग मारूं। तो सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, चंद बच्चे जो माँ की गोद में बोले हैं ना उनमें ये बच्चा भी था, ये बच्चा माँ की गोद में बोला उसकी भी करामत जाहिर हुई। लोग कहते हैं मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह के वालिद माँ की गोद में कैसे कुरान पढ़ लिया, تو ماں کی گودوں میں چھوٹے بچوں کے بولنے کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, یہ کرامت کے طور پہ بہت سارے نہیں تو چند واقعات ہوئے ہیں. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہو سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اب کیا ہوا کہ وہ جو بچہ تھا اس نے وہ ماں کی گود میں بولا اور کہا اے ماں گھبرا مت, یہ دیکھنے میں آ گئے حقیقت میں یہ جنت کا باغ ہے, یہ اللہ کی طرف سے حوصلہ ملتا ہے جب انسان قربانی دیتا ہے. تو ماں نے اس بچے کو لے کے اس آگ میں چھلانگ لگا دی. تو اب میں جو اصل واقعہ بیان کرنا چاہ رہا تھا نا, یہ تو سارا یعنی تمہید لمبی ہو گئی. تو قرآن میں کہیں نہیں کہ پھر اس پر عذاب آیا بادشاہ پر, کچھ بھی نہیں ہے. کیا مطلب دنیا میں وہ سب کیا ہو گئے؟ ناکام. اچھا وہاں ساحل عدیم بھی نہیں تھا, ساحل عدیم ہوتا تو کہتا ہے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کرو, تم چپ بیٹھے ہوئے ہو سب جا رہے ہیں آگوں میں چھلانگے مار رہے ہیں. وجہ کیا تھی بھائی؟ وہ ان کے پاس پاور نہیں تھی بادشاہ سے لڑنے کی. جب پاور نہیں ہوتی تو آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. وہاں آ کے کیا جاتا کہ جی آپ ان سے لڑیں اسٹیٹ سے, آپ یوں کریں, وہ کہیں گے ہمارے کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے, ہم نے ایمان لیا, یہ ہماری تو اس لیے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. تبھی موسیٰ علیہ السلام فرعون کو زبانی دعوت دی ہے, لڑے نہیں ہیں, کلیم اللہ ہوتے ہوئے بھی نہیں لڑے ہیں فرعون کے خلاف. بھائی پاور فل ہے, تو اللہ نے زمینی اسباب کو سامنے رکھ کے ہمیں پالیسیاں بنانے کا حکم دیا ہے. باقی جو ایسے واقعات ہیں کہ 313 اتنے پہ غالب ہو گئے, وہ معجزہ ہے. معجزے پیغمبروں کے ساتھ ہوتے ہیں اور کرامتیں ولی اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں, لیکن اس میں ولی کو پتا ہوتا ہے کرامت ظاہر ہوگی تبھی وہ کر لیتے ہیں. تو اگر جناب ساحل عدیم صاحب کو اگر کوئی کرامت نظر آ رہی ہے کہ ہم یوں کریں گے اور ایسے انقلاب آ جائے گا تو بتائیں, رپورٹ پیش کریں, ہمیں اگر لگا کہ یہ صحیح کرامت ہے تو ہم اس پر عمل کر لیں گے. تو لیکن شریعت میں حکم ہے اسباب اختیار کرنے کا. تو وہ ساری قوم جتنے بھی لوگ ایمان لائے تھے ہزاروں کی تعداد میں, وہ سب آگ میں اس نے جلا دیے. تو اب قرآن میں نہیں ہے کہ اس کا کوئی برا ہوا اس کے ساتھ, اللہ نے آخرت کی دھمکیاں دی ہیں. تو ایک عرب عالم نے اس پہ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ دنیاوی لحاظ سے وہ بادشاہ کامیاب ہو گیا, بغاوت کو اس نے, زبانی بغاوت مسلح والی بغاوت نہیں, اس نے کچل دیا, کامیاب ہو گیا. لیکن کیا ہم اس کو کامیابی کہیں گے؟ بولو نا. نا قرآن کہتا ہے والسماء ذات البروج, والسماء ذات البروج, یہ تو میں ہر فجر میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, والسماء ذات البروج والیوم وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. اللہ کہتے ہیں وہ جو خندقیں کھودنے والے تھے نا بادشاہ اور اس کے فوجی, وہ سب برباد ہو گئے. اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, وہ یہ تماشا دیکھ رہے تھے, مظلوم کمزوروں بچوں عورتوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے تماشا دیکھ رہے تھے, اور بلکہ بادشاہ کے ساتھ اس ظلم میں شریک تھے. دنیا تو کہے گی یہ لوگ برباد ہو گئے, قرآن کہہ رہا ہے کون برباد ہو گیا؟ بادشاہ اور اس کے فوجی جو یہ ظلم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے. انگریز دیکھے گا کہے گا کہاں برباد ہوئے بھائی, کامیاب ہو گئے, بغاوت کو کچل دیا انہوں نے. تو اس لیے اصل کامیابی کون سی ہے بھائی؟ آخرت کی. اصل کس کی کامیابی ہے؟ جو آخرت میں ملے گی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کامیابی کے اسباب اختیار کرتے ہیں پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں, اللہ کی نظر میں ناکام نہیں ہوتے, دنیا کی نظر میں ناکام. تبھی ہمیں حکم ہے کہ ہم نے کامیابی کے اسباب اختیار کرنے. اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی صحت کا خیال نہیں کرتا اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہا ہے, مر جاتا ہے گناہگار ہوگا, بچ جاتا ہے پھر بھی گناہگار ہوگا. وہ کہہ سکتا ہے اللہ میں تو 100 سال جی کے آیا ہوں, اللہ کہے گا تو نے کوشش تو کی تھی 40 میں مر جائے, یہ تو میری قدرت, میں نے تجھے بچا لیا. تو یہ آخرت میں کامیاب ہے ناکام؟ ناکام. ایک آدمی صحت کے تمام اسباب اختیار کرتا ہے پھر بھی مر جاتا ہے, تو آخرت کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ کامیاب ہے, کیونکہ اللہ کے حکم کو اس نے پورا کیا. تو اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لو میرے بھائی, ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے. اب میں اسی آیت کی طرف آتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین هم لأمانات, یہ پتہ نہیں یہاں سے گیا کیسے یہ بیان, فوج پہ نہیں, ایمانداری کے حوالے سے بات ہوئی تھی, یہ انڈیا کے جہاز پہ کیسے آ گئی؟ انڈیا کے جہاز پہ کہاں سے آ گیا؟ خیر دلی سے سمیٹتا ہوں بیان کو میں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان والے امانتوں کے پاسدار ہوتے ہیں. تو امانتوں کا مطلب کیا ہوا؟ کہ والذین هم لأماناتهم وعهدهم, امانت کا مطلب آپ کے پاس کوئی رقم رکھوائے, تو آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں نے ایز اٹ از یہ رقم اس تک پہنچانی. کمیٹیاں کھلتی ہیں, جس کے ہاتھ میں کمیٹی ڈالی جاتی ہے اس کو سمجھا جاتا ہے یہ ایماندار ہے, کھا جاتا ہے بعض دفعہ, بہت واقعات ہوتے ہیں, کمیٹی ڈالی تھی بھاگ گیا. امانت میں یہ بھی ہے, آپ نے پارٹنرشپ پہ کوئی بزنس شروع کیا, اب آپ اس کو اصل پروفٹ بتا ہی نہیں رہے, کیونکہ جب آپ اس کی رقم سے جو پروفٹ کما رہے ہو اس کا مالک کون ہے, آپ ہو یا وہ ہے؟ وہ ہے. آپ اس کو ڈنڈی مار رہے ہو, پروفٹ نہیں بتا رہے. آج ایک میرے سامنے واقعہ آیا کہ ایک صاحب کو, یہ جو گوالے ہوتے ہیں نا گوالے, ایک صاحب نے کہا میرا بھینسوں کا کاروبار تھا تو گوالے دودھ نکالتے ہیں, ان کو ملازمت, ان کو کمیشن ملتا ہے یا تنخواہ ملتی ہے. انہوں نے مجھے بتایا مفتی صاحب خدا کے لیے اس پہ بیان کرو, گائے والوں کا, دودھ والوں کا جو پالتے ہیں نا, ان کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے گوالوں کی وجہ سے, گوالوں میں ایماندار بہت کم ہوتے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہمارے ایک جاننے والا تھا, اس نے پتہ نہیں 25-30 یا 40 بھینسیں تھیں, اب روزانہ دے دنا دن دودھ آ رہا ہے. گوالوں نے, کمبختوں نے یہاں کوئی پانی کی بوتل چپکائی ہوئی ہے, سوری کوئی پمپ ہے دودھ کھینچنے والا. اب مجھے تو یہ ٹیکنالوجیا کا نہیں پتا نا کون سی ٹیکنالوجیا استعمال ہو رہی ہے اس میں, وہ جتنا دودھ نکل رہا ہے اتنا ہی سک کر کے کہیں لے کے جا رہے ہیں, وہ دودھ مالک کو پتہ بھی نہیں چل رہا. اور کہا کہ ایک اور جرم گوالے کر رہے ہوتے ہیں, دودھ نکالتے ہیں تو پیتے بھی ہیں ساتھ ساتھ. انہوں نے کہا اب تو یہ قانون بن گیا, 8-10 کلو تو پی جا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس سے زیادہ نہیں پینا, یعنی اتنا فراڈ ہو رہا ہے اس فیلڈ میں. اور یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے, میں بکری خود کئی دفعہ میں نے پالی ہے, قد بھی نکالتی ہے, دودھ بھی دیتی ہے, بیمار بھی نہیں ہوتی. آپ وہ بکری چرواہے کو پکڑا دو, میں نے بکری کے بچے پالے ہیں, پورے بڑے ہوئے ہیں, جیسے ہمارے اپنے بچے بڑے ہو گئے ایسے بکری کے بچے بھی بڑے ہوئے, ان کی شادیاں ہوئی, ان کے بچے ہوئے, سب کچھ ہوا. لیکن وہی بکری کا بچہ آپ چرواہے کو پکڑا دو, ساری بکریاں بڑی ہوں گی, وہ بچہ کبھی بھی بڑا نہیں ہوگا, وہ اتنے کا اتنا ہی رہے گا. ابے جب یہ کیوں بڑا نہیں ہو رہا, کہتے ہیں مصعب اصل میں ایکچولی اس کی نسل ہی ایسی ہے یار, باقی جتنے تیرے بکرے ہیں وہ سارے بڑے ہو رہے ہیں. تو ہر فیلڈ میں خیانت ہے. آپ دکان کھول کے کسی کو ملازمت پہ بٹھا دو, امین تھا نا وہ, آپ نے اس پہ ٹرسٹ کیا نا. امین کسے کہتے ہیں؟ جس پہ ٹرسٹ کیا جائے, کوئی کاروبار اس کے حوالے کیا جا رہا ہے اس پہ ٹرسٹ کر کے, کوئی ٹھیکہ اس کو دیا جا رہا ہے اس پہ ٹرسٹ کر کے. ابھی ایک ٹھیکیدار کو ہم نے پکڑا, یعنی ہمارے دوستوں نے پکڑا, مجھے بتایا وہ کر کے آ رہا ہے. یہ تو بہت سارے ٹھیکیدار کرتے ہیں, آپ نے سریا ڈلوانا ہے, آپ نے کلر کرنا ہے, ٹھیکیدار کو کام دیا گھر بنانے کا, ٹھیکیدار نے جا کے سریے والے سے بولا کہ دینا اتنے کا ہے اور رسید زیادہ کی بنانی ہے. یہ بہت ہو رہا ہے سوسائٹی میں, یہ تو اتنا ہو رہا ہے کہ اس کو تو برا ہی نہیں سمجھا جاتا. میں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ جنہوں نے دھوکہ دیا وہ سمجھ جائیں گے, وہ بولیں گے مفتی صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے ہماری پول پٹیاں کھول دی ہیں, اس لیے میں اپنے واقعات کو اسکپ کر رہا ہوں. لوگ بتاتے ہیں کارپینٹر کیسے ڈنڈی, آپ کسی کارپینٹر کو بول دو کہ یہ دروازہ بنانا ہے, الماری بنانی ہے, اور اس پہ کوئی اعتماد کر کے بولو بھائی لکڑی بھی تو لے کر آ, ساری چیزیں تو لے کر آ, وہ کیا کرے گا؟ وہ جہاں سے دروازہ خریدے گا یا لکڑی خریدے گا اس کو بولے گا کہ میں تیری دکان سے ہی خریدوں گا سب کچھ, لیکن ایک فیور تو نے مجھے دینا ہے کہ جتنے کی لکڑی ہے نا اس سے تھوڑا زیادہ کی رسید بنانی ہے. وہ بھی خوش ہوتا ہے, اچھا یار میری بائک, میرے پاس بائک تھی, اب تو وہ قصہ اتنا پرانا ہو گیا کہ اب جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس کو ریڈیو پاکستان ہے نا, ریڈیو پاکستان, اس کے قریب میں بائکوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو میری GTO 125 رکھی ہوئی تھی, شوق تھا, میں وہاں جاتا تھا کبھی بائک میں کوئی کام نکل آیا. تو جو میکینک تھا نا وہ مجھے کہتا تھا کہ یہ اس کا یہ پرزہ خراب ہے, فلاں شاپ سے خرید لیں, وہ اچھے ریٹ پہ دیتا ہے. میں جاتا تھا اچھے ریٹ پہ لے لیتا کہ یار یہ جب میرا مکینک مجھے کہہ رہے, بعد میں پتا چلا یہ کمبخت کا کام ہی یہی ہے, اس کا کھانچا کھلا ہوا ہے اس شاپ سے, اسپیئر پارٹس کی دکان سے اس کا کھانچا ہے, اور یہ کوئی پارٹ اگر ریپیئر کرنے سے ٹھیک ہو بھی جاتا ہو نا یہ ٹھیک نہیں کرتا, بلکہ نیا خریدنے کا آرڈر دیتا ہے اور آرڈر بھی وہیں سے دے گا. اچھا میں تو اس کی دکان سے لیتا تھا, تو اس دکان والے نے مجھے کہا کہ یار مفتی صاحب یہ مکینک بہت اچھا آدمی ہے, تھوڑا مہنگا ہے لیکن بندہ بہت زبر, دونوں کا ایک دوسرے کے مکھن پالش کا پروگرام چل رہا ہے. اس دکان والے نے اس کی تعریفیں کرنی ہے, فیور کیا لے رہا ہے کہ جتنے بھی پارٹس خریدوانے ہو میری شاپ پہ بھیجنا, اور اس نے उससे दो चीजें, कमीशन भी बांधा हुआ है और तारीफें भी बांधी हुई हैं कि जो कस्टमर आए मेरी तारीफें करनी है। और तारीफ भी ऐसे करता था कि मुफ्ती साहब ये जो मैकेनिक है ना, ये मैकेनिक थोड़ा महंगा है, यानी थोड़ी बुराई करके तारीफ करो ना तो ज्यादा चलती है। तभी कहते हैं वो सच वो झूठ बहुत खतरनाक होता है जो सच में मिला के बोला जाए, क्योंकि बाकी सच की वजह से उस झूठ को भी लोग सच समझना शुरू कर देते हैं। जो आला दर्जे के कज़्ज़ाब होते हैं ना, वो 100% झूठ नहीं बोलते, वो सच बोलते बोलते बीच में क्या मिला देते हैं, झूठ। तो थोड़ी बुराई करता उस मैकेनिक की, यार ये बंदा थोड़ा अच्छा, वो मैकेनिक बदअखलाक भी बहुत था, बदतमीज भी बहुत था, तो यार ये मुफ्ती साहब है तो बड़ा बदतमीज और थोड़ा महंगा भी है लेकिन काम। अब आदमी कहेगा मैंने बदतमीजी का क्या करना है मेरे भाई, काम जब करके दे रहा है, तो मैंने उसके अखलाक से कोई तबलीग में थोड़ी निकला उसके साथ अखलाक सीखने के लिए। मैं ये आज बहुत हो रहा है, लोग मसाइल पूछते हैं, सऊदी अरब में भी दूसरे मुल्कों में भी मैकेनिक गड़बड़ कर रहा होता है, आपने अपनी गाड़ी मैकेनिक के हवाले कर दी, आप ट्रस्ट कर रहे हो मेरे भाई उस पे, उसको चाहिए जहां सबसे सस्ता मिले वहीं से दे। डॉक्टर ये खयानत कर रहे हैं, पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो एतमाद की बेस पे जाता है ना, डॉक्टर साहब नुस्खा लिख के दे रहे होते हैं कि ये वहां से दवा ले लेना उस कंपनी की, हालांकि डॉक्टर को पता है कि यही फॉर्मूला यही केमिकल जो भी मुरक्कबात हैं ये फला कंपनी के इससे सस्ते मिलते हैं, लेकिन कंपनी ने डॉक्टर से वादा किया हुआ होता है कि आपने हमारी दवा बिकवानी है, इतनी पर्चियां लिख के दे दी तो हम आपको ये फैसिलिटीज देंगे, हम आपको ये फायदा देंगे, और उसमें बाद दफा उम्र भी होता है, अरे वो हराम से उम्र करने जा रहे हो तो ये हम आपको सहूलतें देंगे, डॉक्टर साहब भी लोगों को लिख लिख के दे रहे होते हैं, हालांकि मरीज ने डॉक्टर पर ट्रस्ट किया है तो डॉक्टर मरीज के साथ अमानत में बोलो खयानत कर रहा है, तो ये भी इसी आयत में दाखिल है। टीचर अमानत में खयानत करता है, तालिबे लोग ट्यूटर रख लेते हैं, कारी को रख लेते हैं एतमाद करके, वो आसीन का सांप बन जाता है। ऐसे लोग भी मेरे इल्म में, आमतौर पर कारी ऐसे होते नहीं है, ज्यादातर नेक ही होते हैं, लेकिन ऐसे कारी भी मैंने देखे, लोगों ने एतमाद करके अपनी बेटी हवाले कर दी कि भाई आप इसको पढ़ाओ हम आपको रूहानी बाप समझते हैं, उसी बेटी से नाजायज ताल्लुक कायम कर लिया। ठीक है उसने गलत किया, अपनी जवान बेटी क्यों हवाले कर रहे हो कारी के, उसने तो गलत किया लेकिन आपने उससे ज्यादा गलत किया। यार वो आप पे एतमाद कर रहा है कि ये कारी है, ये कुरान पढ़ता है, ये नेक है, ये मेरी बच्ची को बेटियों की तरह देखेगा, तो आप भी तो फिर बेटी वाला मामला करो ना उसके साथ, और आप जब घर आस्तीन का सांप बने हुए हो। ऐसे वाकयात भी आए कि जी घर में घुसे और जिस बंदे ने अपने घर में घुसाया कि मेरे बच्चों को कुरान पढ़ाओ, उसी बंदे की बीवी से नाजायज ताल्लुक शुरू कर दिया। तो ये सब क्या है, अमानतों में खयानत, जो आप पे ट्रस्ट कर रहा है आप उसी के घर में डस रहे हो, आस्तीन के सांप बने हुए हो। जो हरामखोर लोग होते हैं ना, दो किस्में होती हैं, जो लड़कियों से नाजायज ताल्लुक कायम करते हैं इनकी भी दो किस्में होती हैं, एक तो वो जो अजनबियों से जाके हराम कारियां करते हैं, तवाइफ खानों में जाएंगे, ये भी दो नंबर हैं, ज्यादा बड़ा दो नंबर वो है जो दोस्त ही के घर में डाका डालना शुरू कर दे, जो दोस्त ही के साथ खयानत करना शुरू कर दे। मेरे पास जब वाकया आता है ना, अल्लाह ना करे, ज्यादातर ऐसा नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, खैर गालिब है, कि भाभी का देवर से चक्कर चल रहा है, बहुत अफसोस होता है। यार देवर जो भाई है वो तो मुहाफिज होना चाहिए ना अपने भाई का, चक्कर कैसे चल रहा है, तो देवर ने डोरे डाले हुए भाभी के ऊपर, वरगला रहा है उसको, यार तुझे कोई और नहीं मिला दुनिया में मुंह काला करने के लिए, तू अपने भाई की बीवी के साथ खयानत कर रहा है, अपने भाई के साथ तू गद्दारी कर रहा है, बताओ पांव जो है वो जमीन पांव से निकलेगी कि नहीं निकलेगी। ऐसे ऐसे वाकयात मैं सुनता हूं ना, फिर मेरी नींद उड़ती है रात की, फिर मैं डिप्रेशन में जाता हूं, फिर मैं कहता हूं यार ये जो है इसको दिमाग कहीं और हटाओ, गुस्सा इतना आता है आदमी चाहते गला दबा दो उसका। ऐसे वाकयात भी आए हैं कि भाभी साहिबा का चक्कर था, पता चला किसके साथ है, देवर के साथ, तो देवर डोरे डाल रहा है और फिर भाभी का भी आंकड़ा हो गया, पर्दा वर्दा तो आजकल सोसाइटी में है नहीं, यार तू तवाइफ खाने चले जाता, मुंह काला करता तवाइफों के साथ, लड़कियां बहुत है मुंह काला करने के लिए, बहुत है लड़कियां, दफा हो जाता वहां पे, तू किससे मामला कर रहा है, अपने भाई के साथ खयानत कर रहा है तू, अगर भाभी आंख मटक्का करती भी है तो उसको थप्पड़ मार के तुझे शर्म नहीं आती, तू मेरे भाई की बीवी होकर उसके साथ गद्दारी कर रही है, तो ये बहुत, ये भी सब क्या है, अमानतों में खयानत। भाई तो एतमाद करता है, यार मेरा भाई है, मेरी बीवी को भाभी समझेगा, उसको एहतराम वाला रिश्ता रखेगा, वहीं आप डाका डाल रहे हैं, ससुर बहू के साथ हो जाता है, आदमी एतमाद करता है अपने वालिद पर, कि मेरा वालिद है ये मेरी बीवी को बेटियों की तरह समझेगा। मैं बार बार कह रहा हूं नॉर्मली हमारी सोसाइटी में ऐसा होता नहीं है, बदगुमान ना हो, लेकिन 1000 या 100 में एक वाकया हो जाता है तो उस पर इंसान कांप उठता है कि यार वो तो काबिल एतमाद है, वही अमानत में खयानत करना शुरू कर दे तो ये बहुत। एक दफा याद है हमारे पास केस आया, एक लड़की रो रही थी, वो कहती है कि मुफ्ती साहब बताओ भाई बहन के मुहाफिज होते हैं या नहीं होते। मैंने कहा होते हैं, भाई तो बहनों की इज्जत की खातिर जान दे देता है। उसने कहा मेरा भाई मुझ पर गलत नजरें डालता है। क्या उस क्या क्या दिल पे छुरे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? और वो खुद कह रही है भाई तो बहनों के लिए इज्जत के लिए जान दे देते हैं, जो इज्जत के लिए जान देता है वही गलत नजरों से देख रहा है। ये सब अमानतों में खयानत के की नजीरें हैं कि जिस पे आप ट्रस्ट करते वही काबिल एतमाद ना निकला, वही सांप बन के आपको डसना शुरू कर दे। तो अल्लाह कुरान में क्या कहता है, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, ईमान वाले ऐसे नहीं होते, जब उन पे कोई ट्रस्ट करता है तो वो अमलन दिखा देते हैं कि हम वाकई काबिल एतमाद हैं। वजीरिस्तान वगैरह में और ये जो केपीके के इलाके हैं ना, इनमें भी बड़ी मिसालें दी जाती हैं कि हमारे घर में अगर हमारा दुश्मन भी पनाह लेने के लिए आ जाए, हमारे शागिर्द हैं बहुत सारे वजीरिस्तान के, जब ये वाकयात मुझे सुनाते हैं तो जैसे ये बेगैरती के वाकयात सुन के मैं डिप्रेशन में आता हूं ना, ये वाले वाकयात सुन के वो डिप्रेशन क्या हो जाती है, खत्म। यार गैरतमंद भी है। हमारे एक शागिर्द ने बताया कि मुफ्ती साहब हमारा कोई जानी दुश्मन हो ना, अगर हमारे घर में आ जाए पनाह लेने के लिए, हम कट जाएंगे मर जाएंगे, उसको उसको कत्ल नहीं होने देते दुश्मन के हाथों। क्यों भाई, हमने एक दफा अपने घर में घुसा लिया ना तो उसने हम पे ट्रस्ट किया है ना, यार वो दुश्मनी अपनी जगह, वो बाद में लड़ते रहेंगे, या तो घुसाते नहीं उसको। लेकिन जब चौखट पे आ गया, उसको घर में हमने इजाजत दे दी, तो अब ये दो नंबरी नहीं होती कि आया वह इशारा करके इसको मरवा दो, ना ना ना, दुश्मनी है तो दुश्मनी। ये नहीं हो सकता कि लेबल हम ये लगाएं कि हम तुम्हें पनाह दे रहे हैं और उधर से दुश्मनी कर रहे हो। तो और ये हदीस से साबित है, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पे कुछ काफिरों के बारे में हुक्म दिया था, इनको जहां पाओ कत्ल कर दो, जहां पाओ कत्ल कर दो। वो बहुत बड़े जालिम थे, उन्हीं में से एक छुप छुपा के कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और आपकी खिदमत में बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इनको कत्ल कर दिया जाए, यानी आपका उन पे इतना ज्यादा गुस्सा था ना, उन्होंने ऐसा किया था कि आप क्या चाहते थे, इनको कत्ल कर दी। लेकिन वो सामने आके बैठ गए, तो जब मजलिस खत्म हुई तो आपने सहाबा से पूछा कि तुमने इनको कत्ल क्यों नहीं किया। तो सहाबा ने किया कि कहा कि या रसूलल्लाह आप आंख से इशारा कर देते, बहुत अहम हदीस है, अल्लाह करे ये अखलाक हमारे अंदर भी आ जाए। ये आयत का मफहूम मैं बयान कर रहा हूं, लि अमानातिहिम, अमानतों का ख्याल करते हैं, इसका मफहूम आपकी समझ में आ जाए। तो नबी से सहाबा ने क्या फरमाया कि या रसूल अल्लाह अगर आप चाहते थे कि इसको कत्ल कर दिया जाए तो आप हमें आंख से बोलो इशारा कर देते। आपने फरमाया मा काना लिनबीयिन अन तखूना आइनहू, किसी नबी की ये शान नहीं है कि उनकी आंख खयानत करे। क्या मतलब, ये मेरे सामने आके ट्रस्ट करके बैठा है मुझ पे, एतमाद करके बैठा है, तभी तो आया है ना, अगर एतमाद ना होता तो आता। और मैं जाहिरी एटीट्यूड ये रखूं कि हां भाई तुम पनाह में, और उधर से इशारा कर रहा हूं कि क्या कर दो इनको कत्ल, ये खयानत पैगंबर की आंख खुद से कर देते। तो भाई मैं कहता मैंने तुम्हें कोई अमान थोड़ी दी थी, मैंने कोई ये थोड़ी कहा था कि तुम्हें अमान है तुम आ जाओ, अमान देके आ जाते फिर तो नहीं कत्ल कर सकते थे, तो कोई और कर देता अलग बात है, लेकिन मेरी महफिल में कोई बैठा हुआ हो मुझ पे एतमाद करके और मैं आंखों से इशारे करूं, ये भी क्या है, खयानत, क्योंकि वो ट्रस्ट कर रहा है। मैं समझा पा रहा हूं, अल्लाह करे जो मजमून समझा पा रहा हूं वो मेरे अंदर भी पैदा हो जाए, आपके अंदर भी पैदा हो जाए। आज हमारी सोसाइटी एक नंबर की बेगैरत बन चुकी है। मैं किसी को मलामत नहीं कर रहा, हम सब एक जैसे हैं, बहुत दो नंबरियां हैं, गैरत खत्म, जबान पे कुछ दिल में कुछ और, किसी के यहां मुलाजमत करेंगे उसी की दुकान को खा जाएंगे। अक्सर मैं वाकया बयान करता हूं, हमारे दोस्त ने बकरी के चारे की दुकान खोली और मुर्गियों का चारा, उसमें बाजरा भी। वो कहते हैं ये मेरा मुलाजिम आधा ड्रम बाजरे का खा जाता था। मैंने कहा आधा ड्रम कैसे कह रहे, थोड़ा थोड़ा उठा के बैठा हुआ है दुकान पे, ऐसे टांग पे टांग रख के अखबार पढ़ रहा है, बाजरा भी चल रहा है। जब पूछो तो भाई थोड़ा सा खा लिया क्या है, अबे तू पूरा महीना तो देख, पूरा महीना जब थोड़ा थोड़ा खाएगा तो कह रहे मैंने तो कारोबार ही बंद कर दिया, क्योंकि जिसको मुलाजमत पे ला के रखो गुजरते हुए कभी दाल खा रहा है, कभी चावल खा रहा है, कभी यहां से ये खा रहा है, कह रहे जब हिसाब लगाओ तो कम बहुत आधा तो तू ही खा जाता है। तो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता भाई, ऐसा हो गया है। तो आपने अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोग आंख बंद करके आप पे ट्रस्ट करें। मालिक मकान ने आपको घर दे दिया किराए पे, वो मुतमईन हो के मेरे घर का बेड़ा गरक नहीं होगा। हमारे एक दोस्त से जब किसी को गाड़ी या बाइक देते थे कहते थे अपनी समझ के इस्तेमाल करना। लोग तो कहते हैं ना पराई की समझ के इस्तेमाल करना, तो थोड़ा तमीज थे कि भी पराई गाड़ी है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। पराई की समझ के इस्तेमाल करोगे तो ऐसी की तैसी कर दोगे, अपनी समझ के इस्तेमाल करोगे तो मैंने बहुत दफा तजर्बा किया, बस ये कहता है बयान खत्म करता हूं। आप बाइक सारी जिंदगी इस्तेमाल करो, आवाज नहीं आएगी उसमें से जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। आप अपने दोस्त को देखे तो देखो, एक चक्कर अंडा मोड़ से खाली लगा के आएगा, कहीं ना कहीं से बज रही होगी वो। ये बीसियों दफा का तजर्बा है, कहीं ना कहीं से उसमें या तो चेन कवर से टकरा रहा होगा, हालांकि अब तक सोनी टकरा रहा था। आप लेके जाओगे आगे जाके पंचर हो जाएगी, हालांकि आप तो एक साल से चला रहे हो कभी पंचर नहीं हुई, लेकिन अब पता नहीं क्या करके आया है, इधर गए पंचर, कहीं से आवाज आ रही है, कहीं से ब्रेकों में मसला हुआ हुआ है, क्लच वायर ढीली हो गई, कुछ ना कुछ होगा। बड़ा चोर है तो बड़ा काम निकलवाएगा, वरना छोटा मोटा तो कुछ ना कुछ गाड़ी दे दो वो बजना शुरू हो जाएगी। तो यार इसका मतलब ये है, मुझे एक दफा बयान में जाना था, किसी इदारे ने बुलाया था बयान में, उन्होंने गाड़ी भेजी, वो मदरसा था, उन्होंने गाड़ी भेजी, वो थी कोरोला। मुझे उसने बिठाया कि चलें जी आपको बयान में लेके जा रहा हूं, 5-6 साल पुराना हुआ, मैं जा रहा हूं गाड़ी में बैठा हुआ वो जबरदस्त। तो मुझे ख्याल हुआ यार तुम लंबे रास्ते से लेके जा रहे हो, यू टर्न ले लो। उसने वहीं घुमा के फुटपाथ पे चढ़ा दी दौड़ करके और यू टर्न लिया। मैंने कहा यार ये गाड़ी तुम्हारी जाती है? कहते हैं नहीं मदरसे की है। मैंने कहा बेहतरीन। मैंने कहा अपनी गाड़ी होती कभी भी ये सलूक ना करते उसके साथ, इस तरह से फुटपाथ पे, एक तो वैसे ही इलीगल है ये कि धाड़ करके गाड़ी चढ़ा दी यार। मैंने कहा मैं मदरसे वालों को बताऊंगा कि ये वाट लगाई हुई है, लेकिन मदरसे वाला भी बहुत नेक होगा तो इस पे नोटिस लेगा, वरना वो कहेगा मेरी कौन सी है, चंदे की गाड़ी है भाई। एक का तो मैंने खुद अपनी आंखों से, उसके पास 0 मीटर 125 थी हमारे दोस्त के पास, मेरा ख्याल है 6 साल से उसने ऐसा रखा हुआ था कि लगता नहीं था कि ये सेकंड हैंड है। उसने वो गाड़ी किसी इदारे को बेच दी, 1 हफ्ते बाद मैंने वो बाइक देखी, ऐसा लग रहा था मोटरसाइकिल नहीं है, कबाड़ वाले से चंद पुर्जे लेके चिपका दिए इन्होंने। मैंने उस इदारे वालों को कहा, मैंने कहा यार ये अमानतों में यहां, ये तो आपने चंदे के पैसों से लिए है ना, इदारे के लिए, इदारे को काम होगा जरूरत पड़ती है तो ठीक है, चंदे के पैसे से लिए, इदारे के लिए अपनी रात के लिए नहीं, लेकिन अपनी बाइक का भी आप लोग यही हाल करते हो, अपनी बाइकें भी घरों में ऐसे रखी हुई हैं, 1 हफ्ते में ऐसा लग रहा है कबाड़ खाने से लेकर आए हो। ये हर जगह गवर्नमेंट मुलाजमीन को देख लो, दफ्तरों का क्या हाल, गवर्नमेंट के किसी दफ्तर में जाओ, इन्हीं साहब के प्राइवेट दफ्तर में जाओगे एसी लगा हुआ होगा, हर तरफ पोछा सफाई सुथराई नीट क्लीन सब ऐसे तमीज से, लेकिन यही जब गवर्नमेंट इसके हवाले कोई दफ्तर करती है, कागज इधर पड़े हुए हैं, पान की पीके थूक थुकनिया क्या बेड़ा गरक। मेरे भाई एक दफा किसी इदारे से ना, नेवी के किसी इदारे से एक पेंसिल उठा के घर ले आए, मुझे उन्होंने खुद वाक्य सुनाया, मेरे वाले साहब ने कहा ये पेंसिल तुम्हारी जाती है? उन्होंने कहा नहीं दफ्तर में किसी काम की नहीं थी इसलिए उठा के ले आए। वाले साहब ने कहा किसी काम की नहीं थी तो पड़े रहने देते उसको? है भाई नहीं थी ना किसी काम की तो पड़े रहने देते भाई, तुम क्यों? हम लोग पता है आपको, आप यकीन नहीं करोगे ऐसी बातें भी होती हैं। मदरसे में जब हम दारुल इफ्ता व इरशाद पढ़ा करते थे तो माचिस की तीली से मैं खिलाल नहीं करता था, मदरसे की माचिस की तीली से, समझ में नहीं आ रही बात, क्योंकि भाई मदरसे में लोगों ने चंदा दिया है और माचिस भी खरीदी गई है चंदे के पैसों से, ये टूथपिक के लिए नहीं बल्कि चूल्हा जलाने के लिए ताकि तलवा का खाना पके, तो मैं खिलाल नहीं करता था, मुझे डर लगता था, क्योंकि हमारे हजरत ने इतना डराया हुआ था वक्फ के अंबाले। फिर मैंने हजरत से पूछा तो हजरत ने फरमाया इन छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो अगर कोई ऐसा नहीं कि निकाल निकाल के सारे दांतों में बेड़ा गरक कर दो, कहीं कोई तीली पड़ी हुई है तो कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है, वरना हम ये नहीं इस्तेमाल करते थे। तो आज देख लो आप, मदरसे के अंबाल हो, स्कूल कॉलेजेस की चीजें हो, गवर्नमेंट के इदारों का हाल तो देखो आप, इसमें गवर्नमेंट वाले सबसे माशाल्लाह इन खयानतों में आ गए हैं। कहते हैं गवर्नमेंट का माल है, भाई गवर्नमेंट का माल नहीं होता, अवाम का माल होता है। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, इमरान खान और ये सारे गवर्नमेंट के जो लोग हैं ये अपनी जेब से थोड़ी लेकर आ रहे होते हैं, ये तो अवाम के टैक्स के पैसों से या अवाम के पैसों से ये सब, ये सारी अवामी अमलाक हैं। आप ट्रेनों में सफर कर रहे हो, फट्टा निकाल के घर ले गए, ठीक है, गवर्नमेंट का माल है। ये ज्यादा बड़ा जुर्म है, ये गवर्नमेंट का होता तो मैं भी खाता आपके साथ। गवर्नमेंट का कोई माल नहीं होता, ये किसका माल है भाई, पब्लिक का है। तो किस किस को क्यामत के दिन हिसाब दोगे? तो शख्सी मिल्कियत में तो इंसान उससे माफी मांग सकता है, हुकूमती माल जब खाएगा तो किस किस से माफी मांगेगा। इसलिए हमारे हजरत ने हमें समझाया हुआ था कि कभी अगर जल्दी हो, ट्रेन में टिकट करना हो, ट्रेन में सफर करना हो, टिकट ना ले सको तो फिर क्या करो? हमने कहा हजरत फिर वो टिकट चेकर पैसे लेता है, फरमाया उसको नहीं दो पैसे, आप क्या करो उतरने के बाद टिकट खरीद के फाड़ के फेंक दो, ताकि जितना सफर आपने ट्रेन में किया है वो पैसे गवर्नमेंट के खाते में चले जाएं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के नहीं है, ये किसके हैं बोलो? अवाम के। लेकिन अब मैं एक दूसरा पैकेज पब्लिक के लिए लेकर आया हूं कि बजाय गवर्नमेंट के खाते में डालने के किसी गरीब को खिला दो, क्योंकि गवर्नमेंट के खाते में डालोगे 50% चांस है कि गवर्नमेंट उसको अवाम पे इस्तेमाल करेगी, 50% है कि करप्शन में जाया हो जाए, हो सकता है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा किसी के ऊपर, लेकिन वो गरीब पे खर्च करने में 100% किस पे खर्च हो जाएगा? गरीब पे। तो बगैर टिकट सफर जायज नहीं है, टिकट लेके करो। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि आपके जिम्मे गवर्नमेंट को कुछ देना है तो फिर बेहतर यह कि डायरेक्ट किसको पकड़ा दो, सदका कर दो, किसी गरीब फकीर को खिला दो आप, क्योंकि गवर्नमेंट के खाते में जैसे जकात असल में तो हुकूमत ले सकती है लोगों से, हुकूमत लेके लोगों में बांटे, लेकिन हम कहते हैं भाई यकम रमजान से पहले पहले बैंक से अपने पैसे निकाल लो, जकात गवर्नमेंट को मत दो, गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, सही जगह खर्च करेगी या खा जाएगी। तो इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, तो खुद ही निकाल के, हजरत उमर का दौर अलग था, उसमें गवर्नमेंट को लोग देते थे, सही सही जगह इस्तेमाल होती थी, अब नहीं है वो दौर, गवर्नमेंट को दोगे पता नहीं कहां जाएगी। तो बेहतर यह है कि अपने पैसे निकालो और कहां खर्च करो, खुद गरीबों में डिवाइड कर दो, वो यकीन होगा आपको। तो ये अमानतों में खयानत है। इंशाल्लाह आगे फिर वाहदी हिमराउन, अल्लाह ने एग्रीमेंट की पाबंदियों का भी हुक्म दिया, तो अल्लाह हम सबको अमानतों में खयानत से बचने की तौफीक अता फरमाए। और आज के बयान का खुलासा दो लफ्जों में बयान कर दूं मैं, खुलासा इन आयत का ये है कि आपको अपने आप को ऐसा बनाया है लोग अंधा एतमाद करें, लोग क्या करें, अपने राज आपके सामने रख सकें कि यार ये राज फाश नहीं करेगा, इससे दिल की बात कह लो, अपनी बुराइयां अपनी वो आपके सामने कर सकें, उनको पता हो कि यार मैं अपनी बुराई इसके सामने बयान करूंगा तो ये मेरा ऐब छुपाएगा। मुझे याद है एक पीर और मुर्शिद के सामने किसी नौजवान ने बताया कि मुझे कोई गलत काम की आदत पड़ गई है तो मेरी इसलाह करें, उस पीर ने किसी और को बताया कि ये मुझे ये कह रहा था मेरा, मैंने कहा ये पीर है जाहिल का देखो वो आप पे एतमाद करके अपनी बुराई बयान कर रहे ताकि आप उसकी इसलाह करें और आप जाके किसी और को बता रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत हो गया ना, वो पीर पीर नहीं है फिर, वो जाहिल है। तो आपने अपने आप को ऐसा बनाने, मैंने भी आपने भी, कि लोग हम पे अंधा एतमाद करें। भाई जो इसके पैसे हैं, जो हमारे पैसे हैं वो हमारे ही हैं, वो इसके लॉकर में रखवाएंगे तो इसकी नजरें खराब, बहनें बता देती हैं भाई को मेरे पास इतने पैसे हैं, गए भाई पता है बहन से कैसे, एक खातून ने मुझे कहा मैं अपने ब्रदर को बताना चाहती हूँ मेरे पास 1 करोड़ रुपए आए हैं फलां जगह से आए हैं, तो मैं बता दूं, बता दो, फिर ये नहीं कहना कि वो गए कहां, कह रही नहीं मेरे ब्रदर तो, मेरे भाई तो बहुत नेक हैं, तबलीग में भी वक्त लगाते हैं और जो है वो तो बहुत नेक हैं। मैंने कहा जो तबलीग में वक्त लगाता है नेक होता है, उसका चोरी का तरीका अलग होता है, जो डाकू हो उसका चोरी का तरीका अलग, चोर का चोरी का तरीका अलग, चोर तो है लॉकर से चोरी करेगा, डाकू क्या करेगा गन पॉइंट पे लेके जाएगा, नेक आदमी पता है क्या करेगा? मैंने कहा नेक आदमी ये करेगा, जिस दिन आपने बता दिया ना मेरे पास 1 करोड़ रहे हैं तो भाई को उस दिन नींद नहीं आएगी, बोलेगा यार कोई वो खुद तो ढेला है नहीं, और ढेला हो भी तो दूसरे के पैसों पे जो बिजनेस का मजा है ना, खुदा की कसम वो अपने पैसों पे नहीं है। हमारे वालिद साहब कहा करते थे जब भी कोई आए ना और कहे मुफ्ती साहब इतने 1 लाख रुपए दे दो, मैं बिजनेस कर रहा हूं आधे आपके आधे मेरे, तो उससे बोला करे ये पूरे 1 लाख खुद ही अपने लगा ले पूरे तेरे, कितना बेहतरीन मशवरा है या नहीं है। अच्छा वालिद साहब मुझे ये भी कहते थे ये बात उस वक्त तक समझ में आएगी नहीं जब तक नुकसान नहीं होगा, बहुत बताते थे कभी किसी को पैसे मत देना बिजनेस के लिए, कोई आज काबिल एतमाद बहुत कम लोग हैं, हमें क्या पता चलेगा कौन है या नहीं, बहुत मना करते थे, लेकिन साथ में ये जुमला भी लगाते थे कि समझ में फिर भी नहीं आएगा जब तक डूबेंगे नहीं। वाकई मेरे डूबे, मुझे समझ में आ गया, और मैं अब लोगों को कहता हूं तुम्हें मैं मना कर रहा हूं, ना बाप को पैसे दो, बाप की वैसे खिदमत करो कारोबार के लिए, ना बाप को और ससुराल को तो बेड़ा गर्क, दामाद को दे दिए अब गए। हजारों में कोई एक आध होते भी हैं, मेरा दामाद ना गुस्से हो जाए ना, तो तो हजारों में कोई एक आध होते हैं, मैं सेफ साइड रखता हूं कि कोई मुझे पकड़े तो बोले भाई मैंने दो चार लोगों के बारे में कहा था, वो नहीं है। तो दामाद को दे दिए, शोहर को दे दिए और भाई को दे दिए, गए गए अब नहीं मिलता। तो वाले साहब कहते थे कि जब भी कोई आए कि इतने ब्लाक दे दो, बिजनेस करूंगा, आधे तुम्हारे आधे आपके, तो बोलो पूरे अपने लगा ले, पूरे तेरे, मैं नहीं चाहता कि तेरे आधे मेरे पास आए, पूरे किसके, तेरे। तो ऐसे ही हुआ, बस बात को खत्म कर रहा हूं मैं, क्या कह रहा था यार मैं जल्दी से। अबे नहीं बड़ी अच्छी मिसाल, अबे नहीं यार इतनी अच्छी मिसाल आ रही थी, वो निकल गई। हाँ वो बहन का फोन आया ना, तो मैंने कहा देखो वो उसके दिल में ख्याल आएगा रात को, यार 1 करोड़ रुपए से मैं बिजनेस करूंगा, फिर आधे बहन को दूंगा, फिर आधे मैं खुद रखूंगा, बहन भी करोड़पति मैं भी करोड़पति। सुबह ये शैतान दिल में क्या कर रहा होता है, डाल रहा होता है। मैंने कहा उसके बाद आप उसको पैसे दोगी, वो शुरू में प्रॉफिट भी देगा, उसके बाद चूंकि दूसरे के पैसों पे आदमी को वो मेहनत नहीं होती, वो रिस्क ले लेता है, दाव पे लगा देता है, जुए खेल लेता है, वो अपने पैसों पे वो गलती नहीं करता, तो फिर वो करेगा ये, और उसके बाद खत्म। नहीं आया समझ में, दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह, शोहर को दिए, भाई को दिए, सबका रिजल्ट आखिर में क्या होता है, रिश्तेदारियां नफरत में तब्दील, खूनी रिश्तों में खूनी लड़ाइयां शुरू। भाइयों के साथ वाकयात आए हैं, मैं मना कर रहा हूं सगे भाई को मत दो, भाई भी मेरा बहुत प्यारा भाई है, चहीता भाई है, मैंने कहा चहीता ही रहने दे, तलवारें निकलेंगी, और हुआ फिर वो कत्लो गारत तक की धमकियां देने लगे। तो इसलिए मेरे भाई अमानत खत्म। तभी कुरान कह रहे हैं नेक लोग मार्केट से क्या है, शॉर्ट है, खाली नमाज रोजे से नहीं बनते। आप अपने आप को ऐसा बनाओ लोग कहें ले लो यार पैसे, मेरे पास आते हैं ना, मुझे कहते हैं ये कारोबार के लिए 1 करोड़ रुपए मुफ्ती साहब ले लो लगाओ, कहता हूं ये 1.5 करोड़ मेरी तरफ से ले ले, मैं नहीं लगा रहा, मैं नहीं देता 1.5 करोड़, लेकिन मिसाल दे रहा हूं। आए मेरे पास लोग, मैंने कहा भाई मैं डूब गए तो मैं कहां से, मैं तो मुंह छुपाता फिरूंगा, मैं अब तक अल्लाह ने सोसाइटी में इज्जत बचाई हुई है भाई, कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाता कि मुफ्ती साहब करप्ट हैं पैसे खा गए, तो ये इज्जत रहने दे मेरे भाई, ठीक है अपने पैसे अपने पास रख, अल्लाह बचाए हम सबको, तो अमानत में खयानत से अल्लाह हमें बचाए। वमा अलैना इल्ला बिललाह, यकीनी जन्नती कोई भी नहीं है, शहीद भी नहीं है, जबकि दो बेटियों को पाल कर जवान कर दिया, मैं इसके जन्नती होने की जमानत देता हूं। देखो हदीस में आता है शहीद भी जन्नती है, जिसने 3 बेटियों की कफालत की या 3 बहनियों की बहनों की, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूं। ये सारी हदीसें बरहक हैं, लेकिन फिर भी हमें हदीस ही में मना किया गया किसी शख्स की तरफ इशारा करके जन्नती या जहन्नमी नहीं कह सकते। अब आप कहो इसकी तो 9 बेटियां हैं, हमारे एक दोस्त हैं उनकी 9 बेटियां हैं। मैंने कहा यार नबी ने 3 बेटियों की कफालत पे जन्नत की जमानत ली, आपके लिए तो 3 दफा जमानत है। अब वो क्या इसका मतलब मैं कंफर्म जन्नती हूं? नहीं भाई आप कंफर्म जन्नती नहीं हो। सवाल पैदा होता है जब मैं 3 दफा मेरे लिए जमानत है तो मैं कंफर्म क्यों नहीं हूं? कंफर्म इसलिए नहीं हूं कि हो सकता है कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसपे कंफर्म जहन्नमी भी बन रहे हो। सही है, ऐसा काम कर रहे हो जिस पर जहन्नमी होने की भी बात, गुना ऐसे हैं जिस पर नबी ने कंफर्म जहन्नमी करार दिया ऐसे शख्स को। हदीस में आता है उस शख्स पर अल्लाह की लानत जिसको बूढ़े मां बाप मिले और उसने उनकी खिदमत करके अपने ऊपर जन्नत को वाजिब नहीं कर लिया। क्या मतलब जिसको बूढ़े मां बाप मिले और उसने इग्नोर कर दिया, कन्फर्म लानती कन्फर्म जहन्नमी है। तो इसलिए क्यामत के दिन प्लस माइनस होगा, कुछ चीजें कन्फर्म जहन्नमियों वाली होंगी, कुछ चीजें कन्फर्म जन्नतियों वाली होंगी, तो तराजू के पलड़े में रखा जाएगा कि जन्नत की गारंटियां इसके पास ज्यादा है या जहन्नम वाली गारंटियां ज्यादा है। इसलिए स्पेसिफिक किसी खास फर्द की तरफ इशारा करके हम नहीं कह सकते कि शहीद जन्नती होता है, लेकिन किसी शहीद को कहना ये 100% जन्नती है इसलिए ठीक नहीं है। भाई इसके दिल में रिया थी या लोगों का कर्जा लेके शहीद हुआ है, बाज लोग इसलिए शहीद होते हैं कि अब कर्जा तो अदा हो नहीं रहा, शहीद हो जाओ यार, खा के कर्जा लेके मर जाओ, तो अब इसलिए इशारा करके कहना जायज नहीं है। अगर आप नमाज में किरात भूल जाएं तो क्या आपका गार्ड आपको बता सकता है, जबकि नमाज नहीं बता सकता। जो शख्स नमाज में खारिज है वो लुकमा नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम साहब, मेरा कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है, बाहर मुल्क नहीं रहता हूं, लेकिन मैं वाले दिन इजाजत नहीं दे रहे। ये कह रहे मेरा कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है, मैं बाहर मुल्क کاروبار کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن میرے والدین اجازت نہیں دے رہے. اگر آپ کے باہر ملک جانے سے آپ کے والدین کو کوئی نقصان نہیں ہے تو آپ پرمیشن کے بغیر بھی جا سکتے ہیں. اچھا اکلوتا بیٹا ہوں, اگر آپ ان کی کیئر کر سکتے ہیں, یہاں کوئی اور دوسرا ہے ان کی کیئر کرنے والا, اور آپ کو واقعی شدید نقصان کا خطرہ ہے تو پھر آپ سفر کر کے جا سکتے ہیں. کچھ حقوق ایسے ہیں, کچھ انسانی بنیادی رائٹس ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت کو واجب قرار نہیں دیا, تو اس میں سفر بھی داخل ہے. کوئی پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہے, کاروبار کے لیے جانا چاہتا ہے, لیکن اگر ماں باپ بوڑھے ہیں اور ان کو خطرہ ہے کہ پیچھے کوئی ملازم صحیح پال نہیں سکے گا ان کو یا کیئر نہیں ہو سکتی, پھر حرام ہے, پھر ناجائز ہے. بہتر یہی ہے کہ ماں باپ کی بات مان لیں, نہ جائیں, یہیں کاروبار تلاش کریں. کوئی یقینی چیز تھوڑی ہے کہ باہر کاروبار ملے گا, باہر جا کے بھی لوگ خوار ہو رہے ہوتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ان کو اپارچونیٹی تھی باہر جا کے بزنس کرنے کی لیکن ماں باپ خوش نہیں تھے. انہوں نے کہا ہم ماں باپ کو خوش رکھیں گے, یہی بزنس کریں گے. ایسا ان کا بزنس چمکا ہے, آج کروڑوں میں کھیل رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کے لیے قربانی دی, اللہ نے بہت نوازا. تو مفتی کا کام تو مسئلہ بتانا ہوتا ہے, جائز ناجائز. جائز ہے اگر نقصان نہ ہو, لیکن بہتر کیا ہے, نہ جائیں ادھر کاروبار. ابھی پاکستان کے حالات اچھے ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ, یہاں بھی کاروبار چلیں گے لوگوں کے. جس میں بتائیں گے کہ اگر حرم وغیرہ میں کبھی وضو ٹوٹ جائے تو باہر جا کر وضو کرنے کے بجائے اسپرے. بھائی ایک اسپرے والی ویڈیو بہت چل رہی ہے کہ حاجیوں کو وضو کے لیے وضو خانے جانا بہت مشکل ہوتا ہے, عمرہ کرنے والوں کو وضو کے لیے وضو خانہ جانا بہت مشکل ہوتا ہے, تو اسپرے سے وضو کریں, چھڑکاؤ کیا وضو کریں. یہ مسئلہ لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں, تو شرعی مسئلہ سمجھو کہ وضو میں تقاطر ضروری ہے, اتنا پانی بہائے کہ قطرے ٹپکنا شروع ہو جائیں. تو اگر کوئی اسپرے سے وضو کرتا ہے, منہ پہ اتنا اسپرے کرتا ہے کہ پانی ٹپکنا شروع ہو جائے اور ایک بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے, بازو پہ اسپرے اتنا کیا کہ پانی کے قطرے ٹپکنا, بے شک چند قطرے ٹپکے ہیں لیکن پورا بازو بھیگ جائے اور قطرے ٹپکنا شروع ہو جائیں, تو وضو ہو تو جائے گا اس کا, لیکن یہ خلاف سنت ہے. سنت موقعہ یہی ہے کہ پراپر طریقے سے پانی بہایا جائے اور ہر عضو کو کم از کم 3 دفعہ دھویا جائے, اور سنت موقعہ کا چھوڑنے والا قابل ملامت ہوتا ہے. تو نارملی اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو قابل ملامت ہے. سنت موقعہ کا مطلب ہے کہ اس کو فالو کرنا ہے آپ, لیکن اگر حج میں واقعی کوئی بہت ٹینشن میں ہے, بعض دفعہ موت کا خطرہ ہوتا ہے, وضو ٹوٹ گیا, آپ نے اب طواف زیارت کے لیے آپ گئے تھے. اچھا حج میں صرف ایک طواف ہی ایسی عبادت ہے اور نماز جو وضو کے بغیر نہیں ہوتی, لہذا یہ اسپرے سے اگر آپ نے وضو کرنا ہے تو صرف طواف کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو, نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے, بغیر وضو کے بیٹھے رہیں آپ. لیکن اگر طواف کرنا ہے اور وہاں تک پہنچے, بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, اب کون وضو خانے دوبارہ رش جائے, اتنا ہوتا ہے, مرنے کا خطرہ ہوتا ہے, مشکل ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں اسپرے کا سہارا لیا جا سکتا ہے. تو اس اسپرے سے یعنی اتنا اسپرے کیا جائے کہ قطرے ٹپکنا شروع ہو جائے تو پھر اس کی گنجائش ہے, یہ جائز ہے, لیکن اس کا معمول نہ بنایا جائے. مجبوری میں جائز ہے, خلاصہ یہ نکلا کہ بغیر مجبوری کے جائز نہیں ہے. مفتی سے میرا کرو نے بہت پسند ہو گئی, میرے بہت جلدی جلدی دو دن میرے شادی ہوئی ہے بڑی بہن کی بریلوی عقیدے والے خاندان سے, جبکہ میرا بہنوئی کیا کہتے ہیں, اور المدد یا رسول اللہ اپنے پیر جو مر چکا ہے اس سے بھی دعا مانگتا ہے. بھائی صاحب اگر وہ اتنا بریلوی سے بھی نکاح جائز ہے, سارے بریلوی ایک جیسے نہیں ہوتے, شرکی عقیدہ ہر ایک کا نہیں ہوتا, لیکن اگر ایسا عقیدہ ہے کہ وہ قبر سے باقاعدہ دعا مانگ رہا ہے جا کے پیر و مرشد کو یا مدد کہتا ہے, اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ پیر مدد کر سکتے ہیں, تو پھر تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے, چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو اہل حدیث ہو. اس لیے سوال یہ نہیں ہونا چاہیے بریلوی سے نکاح جائز ہے یا نہیں, بریلوی کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں. بھائی دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو, کسی کا بھی یہ عقیدہ ہو کہ پیر مرشد اپنی قبر میں بیٹھ کے مدد کر سکتے ہیں, اسباب سے ہٹ کے اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں, تو اس سے نہ نکاح جائز ہے, کیونکہ دیوبندیوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, خالی بریلویوں میں نہیں ہے. کچھ دیوبندی اس عقیدے کے حامل ہیں, اپنے پیر کے بارے میں سمجھتے ہیں, وہ جہاں بھی ہوتا ہے اس کو ہمارے سب حالات کا علم ہوتا ہے, تو یہ شرکی عقیدہ ہے. تو ایسے شخص سے نکاح بھی جائز نہیں ہے, نکاح ہو گیا تو وہ کل عدم ہے, تو خلا لیں, علیحدگی لیں اس سے, ایسی صورت میں عدالتی خلا بھی لیا جا سکتا ہے. آپ پگڑی کون سے کپڑے کی پہنتے ہیں اور کہاں سے ملے گا؟ اس کو کہتے ہیں پاج, یہ جاپانی کپڑا ہے, پاج کے نام سے ہے, سوراب گوٹ سے بھی ملے گا اور لیاری میں مدینہ مارکیٹ ہے وہاں سے بھی ملے گا. یہ بہت خاندانی کپڑا ہے, اور جب یہ خریدیں گے تو پیلے رنگ کا ہوگا, یہ ایک دفعہ دھلنے کے بعد اس طریقے کے بعد یہ وائٹ ہوتا ہے, اس پہ نیل بھی لگایا. یہ سارے کام آپ نے اپنے خرچے پہ کرنے ہیں. आप जवाब दुरूद बहुत से हमारे उलमा, बहुत से हमारे अपने उलमा आप पर एतराज करते हैं कि मुफ्ती साहब के पास सरसरी इल्म है, उर्दू तर्जमे वाला इल्म है, मुफ्ती साहब को घूमने फिरने से फुर्सत मिले तो कुछ किताबी मुताला करके अपनी इस्तेदाद बढ़ाएं, और बहुत से मसाइल आपके जमूर से हटकर भी हैं। मैंने 25 साल जामेतुर रशीद में टीचिंग की है, यानी 25 साल का तजर्बा है मेरा। मैं नहीं कह रहा बहुत बड़ा आलिम हूं, लेकिन इतना फारिग नहीं हूं जितना लोग मुझे बना रहे हो। मेरे सफर तो अभी 4-5 साल से शुरू हुए हैं ना, और वो भी साल में एक सफर होता था, अब ये 2 साल से कंटिन्यूसली सफर मेरे शुरू हुए। इससे पहले तो भाई हमने पहले दारुल इफ्ता में पढ़ा है, 22-23 साल कंटिन्यू इफ्ता का काम किया है, बड़े उलमा की निगरानी में बैठ के दारुल इफ्ता किताबें पढ़ाई हैं, जिनमें अरबी अदब की किताबें भी हैं। 20 साल तो कंटिन्यू पढ़ाई हैं बगैर सफरों के, और वो सारी अरबी किताबें। अगर उर्दू किताबें होती तो वो अरबी किताबें कैसे पढ़ाई होती, जिनमें 3-4 साल तो सिर्फ अरबी ग्रामर पढ़ाई है, पढ़ी नहीं पढ़ाई है। उसके बाद फिर अरबी किताबें जो भी फिका की है, हदीस की है, अरबी अदब की है, मुतनबी है, और आपके हिमासा है और मुकामात है, ये सारी किताबें कई कई बार पढ़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने फारिग नहीं है जितना लोग हमें हिदाया पढ़ाई है, जो फिका की सबसे बड़ी किताब समझी जाती है। फिर दारुल इफ्ता में फतवे की जो तहकीकी काम है वो कंटिन्यूसली 20 साल किया है, 20 साल कम नहीं होते मेरा ख्याल है, लंगड़े लूले तरीके से भी किया हो तो 20 साल भी एक बहुत बड़ी मुद्दत होती है। तो अब मैं ज्यादा, ये तो अब मेरे असफार बहुत ज्यादा शुरू हुए, वरना पहले मेरे हफ्ते में 2 बयान होते थे और बाकी तो सारा जामेतुर रशीद में जान। अब भी जाता हूं, अभी भी अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत नालायक हूं, लेकिन 3 साल से बुखारी पढ़ा रहा हूं, 3-4 साल से मिश्कात पढ़ा रहा हूं, और मेरे हुसामी के उसूल फिका के लेक्चर है, ऑडियो लेक्चर, वो आप सुन लें। उसके बाद आप कहते हैं ना कि फारिग हो तो फिर कहना आपका हक बनता है, और मैं हूं भी, जो बड़े उलमा है उनके मुकाबले में तो हम वाकई फारिग हैं, हमारी क्या हैसियत है उनके मुकाबले में। लेकिन लोग जो ये तबसरा कर रहे होते हैं, तबसरा आप जरूर करें, लेकिन किसी शख्स के पूरे हालात जान के। अवामी बयानात से आप ये असर लेना कि मुफ्ती साहब मसाइल में फारिग हैं, ये ठीक नहीं है। अवामी मजलिस की बातें कुछ और होती हैं, उलमा की बातें अवाम के, यानी उलमा के सामने जो टीचिंग है, तदरीस है, वो कुछ और होती है। तो मिश्कात के भी मेरे लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वो भी सुन लें, उसके बाद जाके राय कायम करें। तो हो सकता है जितना आप समझ रहे हैं उससे भी ज्यादा फारिग निकलूं मैं आपके, हम तो इनको कुछ समझते थे तो बिल्कुल ही फारिग निकले, लेकिन उसके बाद आपको तबसरा करने की का हक होगा, उससे पहले तबसरा करने का हक नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा अपने खर्चे। और मेरे जो मसाइल जमहूर उम्मत से खिलाफ है, मैं दावा करके कहता हूं कोई एक मसला भी मेरा जमहूर के खिलाफ नहीं है, कोई एक मसला भी। तो इसलिए कोई मिसाल दें, कोई एक मसला, मैं गैर मुकल्लिद नहीं हूं। ये हमारे यहां अहले हदीस हैं कि उसका मसला कुछ और, उनका अपना इश्तिहाद कुछ और। परसों एक मेरे पास शख्स आया जो अहले हदीस था, हनफी हो गया, शायद यहां बयान में बैठा हुआ भी हो, हनफी हो गया। मैंने कहा आप कैसे हनफी हुए? कह रहे मैंने 10 अहले हदीस उलमा से मसले पूछता था ना, 10-10 के अलग जवाब होते थे, तो मैं बौखला गया कि यार मैं इसको अपनी औलाद में लेके नहीं चल सकता। हर आदमी मुश्तहिद है भाई, तो क्या इसका नतीजा तो निकलेगा। मैं तो चलो ठीक है, अहले हदीस की हद तक तो मामला ठीक है, वो अहले सुन्नत वल जमात में ही दाखिल हैं, उनका मकसद ही कुरान और सुन्नत को फॉलो करना है। लेकिन इस तरह मैं अगर बेलगाम चलूंगा, आगे मेरी औलाद 2 हाथ और आगे निकलेगी, होते होते आखिर में गामदियत की तरफ चली जाएगी, तो बेहतर नहीं है? सदियों से एक फिका मुतवातिर मुतवारिस चला आ रहा है, खिलाफतें चली हैं उस पर, तो उसी को आराम से लेके चलो। तकलीद तो करनी है भाई, आप अहनाफ की नहीं करोगे तो अहले हदीस आलिम की तकलीद शुरू कर दोगे, आपके पास तहकीकी इल्म थोड़ी है, तो तकलीफ तो करनी है। तो बेहतर नहीं है सदियों से एक मुतवातिर मुतवारिस फिका चला आ रहा है, तो उसी को फॉलो करो। आधी से ज्यादा उम्मत जिसको फॉलो कर रही है, आधी से कुछ उम्मत जो है इस फिका, देखो 50% से ज्यादा है इस वक्त हनफी, 30% के करीब करीब शाफी हैं, 17% के करीब करीब मालिकी हैं, और 2% हम्बली हैं, 1% बिखरे हुए लोग हैं। वो कहते हैं हम खुद इश्तिहाद करेंगे, हम किसी की तकलीद नहीं करेंगे। तो उनमें हर शख्स की राय मुख्तलिफ, हर शख्स का तलाक का फतवा मुख्तलिफ, ये 3-4 दिन पुरानी बात है, सीसीटीवी कैमरे से निकल भी आएगी। अगर कोई कहता है नहीं हम नहीं मानते, तो वो हो सकता है कैमरे में अगर रिकॉर्डिंग चल रही है आवाज, ये तो वो रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी कि वो अहले हदीस था, हनफी हुआ इसी बेस पे। यार हम तो, मैं कहते जिस आलिम से पूछूं अलग जवाब मिलते हैं, चंद मसाइल में इत्तेफाक है, बाकी सब, और मैं उनमें उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, वो इश्तिहाद करते हैं हर शख्स, तो हर एक का इश्तिहाद दूसरे से क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। तो मैं गैर मुकल्लिद नहीं हूं कि मैं इश्तिहादात कर करके लोगों को गुमराह करूं, मेरी वही राय होती है और मुदल्लल होती है, मैं अंधा मुकल्लिद नहीं हूं। तभी मेरे जो फिकी मसाइल इख्तलाफी मसाइल पे दलाइल के साथ जो मैंने क्लिप रिकॉर्ड करवाए हैं, एक दफा करवाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कयामत तक, अब तक की रिपोर्ट ये है कि उसका जवाब नहीं मिलता, अब तक की रिपोर्ट ये है। تو وہ آپ سنیں تو میرا کوئی مسئلہ جمہور کے خلاف نہیں ہے, اگر کوئی ہے تو وہ لے کر آئیں, مثال دیں, پھر میں بتاؤں گا کہ یہ جمہور کے خلاف ہے یا نہیں ہے. بعض آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں امام حنیفہ کے کھاتے میں زبردستی ڈالی ہوئی ہیں حنفیوں نے, حنفی بھی تھوڑی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. اب حنفی لوگ کہتے ہیں ہم جو بدعت کریں امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈالو اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش بھی کرو. یہ کام میں نہیں کرتا, میں علماء دیوبند کو برحق ضرور سمجھتا ہوں, لیکن میں نے کلمہ دیوبندیت کا نہیں پڑھا ہے, اور مجھے اپنے علماء دیوبند کے اکابر ہونے پر فخر اس لیے کہ ہمارے علماء دیوبند بھی اگر سمجھتے تھے ہمارے بڑے بزرگ میں کسی سے غلطی ہوئی ہے تو وہ بھی رجوع کرتے تھے. یہ چیز بھی ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھی ہے, تو ہم اندھے مقلد نہیں ہیں کہ کسی دیوبندی بزرگ سے کچھ ہو گیا تو پتھر پہ لکیر اس کو صحیح کرنا ہے. نا ہم پہلے کہتے ہیں بھائی اگر کسی دیوبندی عالم سے, چاہے میرا پیر و مرشدی کیوں نہ ہو, اگر وہ کوئی غلط مسئلہ بیان کرے گا, غلطی ہوتی ہے ہر انسان سے, ہمیں لگ گیا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, ببانگے دوہل بیان کر دیں گے, چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے آپ کو برا لگے. اب یہ چیز بعض دیوبندیوں کو بری لگتی ہے کہ نہیں جی جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کہو, یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی, یہ ہمارے اکابر کی روش نہیں تھی تو ہم کیوں اس کو صحیح کہہ لیں, وہ نہیں, اٹ ازنٹ پاسبل. جامعۃ الحسنین کہاں ہے بھائی, جامعۃ فیصل آباد سے لوگ آئے ہوئے ہیں, کہاں ہیں؟ السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی؟ ٹک ٹاک سب سیٹ مارکیٹ میں. مجھے اپنی بیوی اور سسرال والوں سے نفرت ہوتی جا رہی ہے. میرا سوال یہ کہ مجھے اپنی بیوی اور سسرال والوں سے نفرت ہوتی جا رہی ہے کیونکہ وہ عزت نہیں کرتے میری کبھی, کبھی کبھی دل کرتا ہے طلاق دے کر دوسری شادی کر لوں. ان کو یہ خطرہ ہے کہ سسرال والے عزت نہیں کر رہے تو نہ کرواؤ, تمہارا کیا لینا دینا. تو یہ جو ناک پہ مکھی بٹھانے والے داماد ہوتے ہیں یہ ویسے ہی بہت برے لگتے ہیں. بھائی ان کی بیٹی تمہارے گھر میں, اس کے ساتھ محبت عزت کا معاملہ رکھو, سسرال جاؤ پوچھ لیں ٹھیک ہے نہیں ہے تو سسرال کے ٹکڑوں پہ تھوڑی پلتے ہو یار. یہ باتیں وہ کرتا ہوا اچھا لگتا ہے جو سسرال کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہو, آپ تھوڑی پل رہے ہو, عزت دینی ہے دو نہیں دینی ہے ایسی کی تیسی جاؤ. یہ تو گھٹیا سوچ ہے, میرے خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی اور اعتراض کریں کہ بیوی بد اخلاق ہے زبان چلاتی ہے تو پھر میں اس پہ نوٹس لوں گا انشاءاللہ, ایسا چو جاننے والا ہے اس سے بات کروں گا کہ یار اس کی بیوی چیخ کر دے. لیکن یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سسرال والے عزت نہیں دے رہے, نہ دیں عزت ایسی کی تک جاؤ. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہ میرے پڑوسی عزت نہیں دے رہے, میرے وہ رکشے والا عزت نہیں دے رہا, تو نہ بھائی تو ریزرو رہے ان سے نہ زیادہ تعلق رکھ. مفتی صاحب ٹیکسی والا تمیز سے بات نہیں کر رہا مجھ سے. اب آپ کہو گے بھائی سسرال ٹیکسی والے تھوڑی ہیں, رشتے دار ہیں تو عزت دیں تو دے دو, نہیں دے دیں تو ریزرو رہو ان سے, آپ کی مجبوری تو نہیں ہے نا. وہ دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ کے آپریشن کو کامیاب کرے. اس زمانے میں تقوا والی زندگی کیسے گزارے, لمبا بیان ہے یہ, تمیز مختصر سوال پوچھا کرے بجے لیے. یہ اختلافی سوال ہے, بعد میں اختلافی مسائل مت چھیڑو, ابھی ویسے ہی محرم آنے والا ہے, پھر دھماکے ہوں گے, دو چار لوگ ڈیلیٹ ہو جائیں گے. ایک واقعہ سونا کہ ایک صاحب بھی اپنی ازدواجی جھگڑے سلجھانے کے لیے حضرت عمر کے پاس گئے, تو حضرت عمر کی خود اپنی زوجہ سے اختلاف چل رہا تھا اور گھر سے باہر آواز آ رہی تھی. سوال یہ کہ عورت کی آواز, حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت لے کے, تو دیکھا حضرت عمر کی بیوی خود حضرت عمر کو کچھ تھوڑا اونچی آواز میں کچھ ڈانٹ رہی تھی. یہ روایت ہے, مجھے پوری سند کی تحقیق نہیں ہے. تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ بھائی اس سے مجھے کتنے سارے فائدے ہیں. وہ حضرت عمر کے الفاظ کا میں اپنے الفاظ, کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا یہ واقعہ پڑے ہوئے, تو وہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے میں زنا سے بچا ہوا ہوں, میری حلال تسکین کا یہ ذریعہ بنتی ہے, اور گھر سنبھالا ہوا اس نے. تو خلاصہ ان کا یہ ہے کہ بھائی جب آپ کے کسی سے اتنے فائدے ہوتے ہیں تو کچھ کڑوی کسیلی برداشت کرنی پڑتی ہے, گھر ایسے ہی چلتا ہے. چنگیز خان اور ہلاکو خان کی طرح گھر کو نہیں فتح کیا جا سکتا, تو کچھ آپ برداشت کرو کچھ وہ برداشت کرے گی, اسی طرح گھر چلے گا. یہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا میں بہت زبردست کنٹرول کیا ہوا ہے, ایسے کنٹرول میں ہے, یہ یا تو پھینک رہے ہوتے ہیں یا چنگیز خان کی اولاد سے ان کا تعلق ہوتا ہے, ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. میرے سامنے آتے ہیں نا یہ کر رہی ہے, وہ آج ایک کیس آیا, میاں بیوی آئے تھے, عورت نے شوہر کی برائیاں شروع کر دی, یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے آپ کے حقوق کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے, یعنی مثال کے طور پر جو آپ کے واجب حقوق ہیں وہ نہیں دیتا اور اس میں جھوٹ بولتا ہے, کہہ رہے نہیں جنرلی. میں نے کہا بولنے دو, آپ کا کیا جا رہا ہے. اب مثال کے طور پر شوہر بیٹھا ہوا ہے انڈا موڑ پہ چائے پی رہا ہے, بیوی تو پوچھتی ہے نا کہاں بیٹھے ہوئے ہو, اس کو پتا ہے میں نے یہ بول دیا انڈا موڑ پہ دوستوں کے ساتھ, ہوں دوستوں کے لیے بڑا ٹائم ہے. تو پھر آدمی کا کسی کام کا رہتا نہیں ہے, پھر وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مدنی مسجد بیان سننے کے لیے گیا ہوں. اب غلط تو یہ بھی ہے लेकिन तुम्हारा क्या लेना देना भाई, घर से बाहर है तो छोड़ो, उसको फोन करके उसको कंट्रोल करके दिमाग खराब होता है आदमी का। उसको पता है सच बोलूंगा तो, अब जिसकी दो शादियां हैं वो सच बोल सकता है, मैं दूसरी की बाहों में बैठा हुआ हूं, ऐसा होता नहीं है लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं। तो ये तो मैंने कहा भाई आपके बेसिक हुकूक अदा कर रहा है नहीं कर रहा, और आपके बेसिक हुकूक के मामले में अगर झूठ बोल रहा है तो बताओ मुझे, बाकी झूठ बोलना बुरी बात है, इसको मैं अलग से समझा दूंगा, लेकिन इसकी टेंशन आप मत लो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी। तो कहने लगी मुझे घुमाने के लिए लेके जाता है लेकिन मां बाप से छुपा के। मैंने कहा यार ये अजायब घर में रखने के काबिल है इतना नेक शोहर। मैंने कहा मां बाप से छुपा के, कह रहे यार अगर मां बाप के उसको बता बता के लेके जाऊंगा तो फिर मां बाप पूछेंगे यार हमें तो कभी इतना घुमाया नहीं, बीवी को बहुत घुमा रहा है इसलिए मैं मजबूरी है। तो मैंने कहा घुमा तो रहा है ना, घुमा तो रहा है लेकिन बता के जाए ना, मर्द का बच्चा बन के जाए। मैंने कहा आपका मकसद सिवाय बेटे को मां बाप से लड़वाने के अलावा बोलो कुछ भी नहीं, आपको आम खाने से मतलब है, पेड़े गिनने से थोड़ी। अब उसकी कोई मजबूरी, मां बाप गलत कर रहे हैं कि छुपा के बहू को लेके जा रहे हैं, मां बाप को चाहिए बोले मैं लेके जा, मां को चाहिए बोले मैं तेरा बाप ही मुझे घुमाने लेके जाता था, बता के लेके जाता था तो मेरे सामने लेके, लेकिन अब मां बड़े जर्फ की नहीं होती। तो अजीब, मैंने कहा भाई लोग सुट्टे लगा रहे हैं, चर्स पी रहे हैं, मियां आजकल जो मार्केट में जिसके इतना नेक मियां मिला हुआ है। तो एक दफा एक साहब आए कि मेरे बीवी से हर महीने झगड़ा होता है। मियां बीवी ने कहा हमारा हर महीने झगड़ा होता है, बेजार आ गए। मैंने कहा यार इतने नेक महीने में सिर्फ एक झगड़ा हो रहा है यार, मैंने कहा तुम पागल हो, अहमकों की जन्नत में रहते हो। मैंने कहा कम से कम 4 झगड़े महीने में होने चाहिए, इससे इम्यून सिस्टम आपका क्या करता है, बूस्ट करता है, बर्दाश्त की आदत होती है। यानी ये तुम दुनिया को समझ रहे हो कि 100% जन्नतुल फिरदौस हो, ये इनके अपने सॉफ्टवेयर खराब हुए हैं, ये कभी भी सुकून में नहीं रह सकते भाई। महीने में एक झगड़ा हो रहा है, उसको कह रहे हैं झगड़ा क्यों हो रहा है, पागल लोग हैं। तो मैंने फिर उनको तरगीब दी ज्यादा झगड़े की। मैंने कहा बेहतर ये कि हर हफ्ते में एक, कम से कम महीने में 4, वरना आइंदा मेरे पास आने से पहले 2 झगड़े मुझे रिपोर्ट चाहिए। 2 झगड़े नहीं हुए तो गार्ड को बोल दूंगा यहां से इनको वापस भेजो, कम से कम 2 झगड़ों की रिपोर्ट चाहिए मुझे। तो ये नॉर्मलाइज करने के लिए, मसल लड़वाने के लिए नहीं, कि ये नॉर्मल है। क्योंकि बाज लोग वो चाहते हैं कि हमें बिल्कुल ऐसे सुकून की जिंदगी गुजरे, तो फिर वो सुकून की तलाश में डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं। तो उनका सुकून इसी में है कि ये इसके आदि हो जाओ, ये होगा, ये तो होगा, तो इसी से सुकून मिलेगा। तो आप यूनिवर्सिटी में नाम है हम लड़कियों के सामने क्यों बयान करने जाते हैं। गुनाह की महफिल में जाना जायज नहीं है, क्योंकि ये इसकी अलामत है कि आप उस गुनाह पे राजी हो। शराब कबाब की महफिल है, आप भी वहां चले गए। लेकिन अगर गुनाह की महफिल में आप गुनाह रोकने के लिए जा रहे हो तो फिर वाजिब है। अब कोई आपसे पूछता है तू शराब खाने में क्या कर रहा था, तो अगर आपको वैसे ही इंजॉय कर रहा था तो गुनाहगार हो। अगर आपको मैं इसलिए बैठा था ताकि शराबियों से दोस्ती लगाऊं और आहिस्ता आहिस्ता उनसे शराब को छुड़वाऊं, तो फिर आप अकलमंद हो गए, बोलोगे वेल डन। तो हम यूनिवर्सिटियों में गुनाह के माहौल में नहीं जाते, गुनाह को इंजॉय करने के लिए या उनको गुनाह पे अप्रिशिएट करने के लिए उस माहौल में इसलिए जाते हैं ताकि उनके दिल में दीन की मोहब्बत पैदा की जाए। अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर फंकार अदाकार जाते हैं, फिर वो तो नाच गाने करके आते हैं। तो इसलिए ये लाजिम है जाना। जब आपकी कोई हैसियत नहीं बल्कि मेहमान खुद ही मिलाने जाते हैं, क्यों हैसियत नहीं है मेरे भाई, 1.5-2 घंटे का वो बयान करवा देते हैं हमसे तलवा को बिठा के और आपको की हैसियत नहीं है। क्या मुफ्ती रशीद साहब इस तरह की महफिल में जाया करते थे? वो चूंकि मदरसे में ज्यादा रहे, खानका में ज्यादा रहे, सोशल मीडिया भी नहीं था उस वक्त। हाँ मुफ्ती रशीद अहमद साहब के शागिर्द उस वक्त भी जाते थे, आज भी जा रहे हैं। तो और मुफ्ती रशीद अहमद साहब मना नहीं करते, क्योंकि मुफ्ती रशीद अहमद साहब के खलीफा हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब हैं, वो भी उन्हीं जैसे तकवे वाले हैं, तो वो मना नहीं करते, वो तो कहते हैं जाना लाजिम है। भाई देखो जब 2 मुसीबतें होती है ना, 2 जरर, तो देखा जाता है कम नुकसान किस में है। कम नुकसान जाने में नुकसान है या ना जाने में? ना जाने में इंतहाई खतरनाक नुकसान है। आज बेपर्दगी है, ना जाने से ही बेपर्दगी बढ़ेगी, बल्कि कुफर और इल्हाद फैलेगा, एथियज्म फैल रहा है यूनिवर्सिटियों में। अभी तो सिर्फ उनके दिल में खुदा का तसव्वुर बिठा दे, इस्लाम की अकानियत, ये भी बहुत बड़ी फतह है। आप कह रहे हो ये शरी पर्दा करें, आप उनको मुसलमान तो बना लो, ये हालात चल रहे हैं इस वक्त। मोदी बहुत 40 कदम चले। देखो मैं सवाल इससे नहीं पढ़ता कि जवाब से उल्टा कर लो, खुद ही सवाल बन जाएगा, टाइम बच जाता है इससे। اگر کسی نے غسل کیا اس کے بعد دوبارہ منی کے قطرے نکل آئے تو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا اس کو, کیونکہ وہ بعض دفعہ پوری طرح جسم سے منی خارج نہیں ہوتی. تو اس لیے جب بھی کسی پہ غسل فرض ہو تو یا تو ایک دفعہ پیشاب کر لے وہ اور پھر غسل کرے, پھر اگر قطرے آ بھی گئے تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا چند قدم چل لے تاکہ کوئی بھی قطرہ اٹکا ہوا ہے وہ تو نکل آئے, یا گہری نیند سو جائے, سو کے اٹھنے کے یعنی ایک ٹائم گزرے کہ بیچ میں کوئی وقفہ ہو, فاصلہ ہو کسی کام کا. تو سب سے بہتر طریقہ ہے کہ پیشاب کر لے وہ, تو اس پیشاب سے لائن صاف ہو جاتی ہے, تو پھر اگر دوبارہ قطرہ آ بھی جائے تو اس کو اس کا وہ نہیں سمجھا جاتا شریعت کی نظر میں, تو اس سے دوبارہ غسل فرض نہیں ہوتا.
سوال ہے کہ آپ نے شادی کے موضوع پر کوئی ٹچ بھی نہیں کیا جبکہ اصل موضوع آپ کا شادی ہوا کرتا ہے.
کیا تو ہے, ابھی میں نے بتایا نا بے پردگی اور یہ سب کر لیا نا ٹچ, اس سے زیادہ ٹچ تو نہیں, پھر تو شادی کر بھی لی, بیان بھی کر لی, اور کتنا ٹچ کروں میں. چلو بھائی بس آخری رفیعت الاقلام وجفت صوم میں خطبے میں یہ حدیث پڑھتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جو نفع پہنچنا ہے پہنچ کے رہے گا, جو نقصان ہونا ہے ہو کے رہے گا, کیونکہ اللہ نے تقدیر جس قلم سے لکھی ہے وہ قلم اللہ نے اٹھا کے رکھ لیا ہے, اور اس کی سیاہی بھی جفت صوف وہ صحیفہ بھی خشک ہو چکا ہے, اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی.